जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, राधा माधव कुंज विहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, భగవతీ రుద్దమశ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ టేకింగ్ యువర్ టైమ్ అవుట్ టు కమ్ హియర్ టు లిసన్ టు దిస్ సెమినార్ ఆన్ భక్తి రసామృత సింధు. సో వీ హ్యావ్ 2 hours నౌ అండ్ 2 hours ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ టు కవర్ అండ్ I was just wondering, you can decide, we have like 2 options, either we can do a quick overview of what is there in Bhakti Rasamrita Sindhu, or we could start with an overview and maybe some important topics we can discuss little elaborately. Of course, we don't have much time. 4 hours, generally I take anywhere between 60 to 80 hours to complete this course. So 4 hours is, it would be a short overview. Actually, even it's not a full-fledged overview also. So, but still we could do. See, there are 2 options, both are good. One will be a very, you get a full-fledged idea of what is there in the Bhakti Shastri portion of Bhakti Rasamrita Sindhu, or maybe some 1 or 2 topics we could discuss little elaborately. What would you okay, you can raise your hands. Let's take vote. Ashram devotees need not vote. Those who want overview, you cannot raise your hands for both, only one. Okay, overview, you can raise your hands. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Overview.
Babuji, what is the hours required for both? Same, huh?
Same, same. 2 plus 2, 4 hours only we have.
Whatever you do,
ఓకే. సో నౌ ఐ థింక్ దే హావ్ అండర్స్టూడ్. సో overview, you can raise your hands. How many of you want overview? 1, 2, you cannot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, how many of you want 1 or 2 topics, little elaborate discussion? Okay, not any. Okay, so we will go for the overview only. But still, if I get stuck up, then it'll end up as a discussion. So, we won't have official question and answer time. You can ask your questions as and when we are discussing. Okay. So, if you have any doubts, it is not clear, you want like a, how do we practically apply this? How do we practice this? Then you can raise your hands and ask the question. You will get the mic. Okay. Hindi mein. Where is he? Absconded. ठीक है, हिंदी में तो, हिंदी में प्रयास करता हूँ. हिंदी वैसे तो मुझे उतना अच्छा आता नहीं है. नहीं, ठीक है ब्रो जी, हिंदी हिंदी में प्रयास करेंगे. ठीक है, तो
ओवरव्यू
Whatever happens, happens. It's Krishna Katha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. तो इस श्लोक में ऐसा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविष्टम जो इच्छा था उसको ये धरातल पे प्रकट करने के लिए रूप गोस्वामी का अवतरण हुआ इधर. तो रूप गोस्वामी एक ऐसा आचार्य है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का मन में जो तीव्र इच्छा था, जिनका चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था, ये उनका अवतरण का जो मिशन था उसको आगे लेके चले चैतन्य श्रील रूप गोस्वामी. तो चैतन्य महाप्रभु का जो अनुयायी और शिष्यों में सबसे एक प्रसिद्ध स्थान रूप गोस्वामी का होता है. तो वो रूप गोस्वामी ने ऐसा क्या था चैतन्य महाप्रभु का तीव्र इच्छा उसको ये धरातल में प्रकट करने के लिए इतना सहायता किया रूप गोस्वामी ने. तो चैतन्य चरितामृत का पहला ही आदि लीला का पहला अध्याय में 14 श्लोक में आपने सुना होगा, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्तिश्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन. मैं पूरा ट्रांसलेशन नहीं बोलूंगा, पर अनर्पित चरिम चिरात जो पहले एक साधना का रूप में कभी भी कोई भी संप्रदाय में और आचार्यगण ने दिया नहीं था, हाँ, उसको देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु. तो हमको इधर क्या मिल रहा है उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है. तो अभी तक अनेक प्रकार का संप्रदाय है, आचार्य से चार प्रसिद्ध संप्रदाय है, उसमें अनेक अनेक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य इत्यादि अनेक प्रकार का आचार्यगण आए, पर चैतन्य महाप्रभु जो देने के लिए आए वो कभी किसी ने पहले दिया नहीं एक साधना का रूप में. उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम जो वृंदावन का कृष्ण के प्रति प्रेम देने के लिए आए, व्रज प्रेम. ये जो व्रज प्रेम है वृंदावन कृष्ण के प्रति, रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कि आपको ये चाहिए तो आपको रूप रघुनाथ प्रभु चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बनना पड़ेगा, और कोई भी संप्रदाय में नहीं मिलेगा ये. तो राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, चैतन्य महाप्रभु जो वृंदावन में जो व्रजवासी गण कृष्ण के साथ जो एकदम ऐश्वर्य रहित, रहित मींस विदाउट, राइट, ऐश्वर्य रहित शुद्ध मिठास का जो संबंध रहता है कृष्ण के साथ वो देने के लिए आए, और उसको आम जनता को समझाने का प्रयास किया रूप गोस्वामी ने उनका ग्रंथों के द्वारा. उसमें सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो भक्ति रसामृत सिंधु. ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है इसको लिखने के लिए रूप गोस्वामी जो नित्य पार्षद है चैतन्य महाप्रभु का और कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, हमारे जैसे साधक नहीं है रूप गोस्वामी, उनको 17 साल लगा ये एक ग्रंथ लिखने के लिए. हम उसको अभी 4 घंटे में समझने का प्रयास करेंगे, पूरा नहीं. तो 17 साल रूप गोस्वामी को लगा। तो एक साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे हमारा जो भक्ति का जो विधि है उसको 3 भाग में विभाजित किया हुआ है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ये तो पता है आपको। संबंध जो है हमारा कृष्ण और राधा रानी के साथ, क्या हमारा संबंध है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, और वो संबंध ज्ञान का अलग अलग प्रकार का जो डिटेल्स है वो संबंध ज्ञान है। तो उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को नियमित किया। वो हमारा संबंध आचार्य है। उन्होंने ग्रंथों के द्वारा, उनका आचरण के द्वारा, उनका टीचिंग्स के द्वारा वो सिखाया। और रूप गोस्वामी के द्वारा अभिधेय, भक्ति कैसा करना चाहिए उसके बारे में वो रूप गोस्वामी के बारे में सिखाया। और रूप गोस्वामी ने वो जो अभिधेय है उसको एकदम क्लियर कट रूप में ये भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकट किया है। रूप गोस्वामी का ने अनेक अनेक ग्रंथ लिखा है, पर उनका एकदम मैग्नम ओपस बोलते हैं इंग्लिश में। मैग्नम ओपस मतलब एकदम सबसे प्रसिद्ध वर्क वो है भक्ति रसामृत सिंधु। तो और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उन्होंने प्रयोजन सिखाया, प्रेम प्रयोजन। ये जो भक्ति करके हम क्या पाना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम, वृंदावन कृष्ण के प्रति एक जैसे व्रजवासीगण उनको प्रेम करते हैं कृष्ण को, वो प्रेम को पाना वही है हमारा प्रयोजन। सो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो रूप गोस्वामी के 200-250 साल के बाद आए, एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य है, उन्होंने रूप गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन में एक श्लोक रचना किया। वो बोलते हैं, भक्ति पूर्वै श्रितास्ताम तु रसं पश्येद् यदा तदि तम नौमि सततम रूप नाम प्रियजनम हरे हे। वो बोलते हैं कि अभी तक अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग आचार्यगण आए गए, उन्होंने भक्ति को परफेक्ट किया, भगवान को पाया, पर ये सब आचार्यों में से मेरा बारंबार प्रणाम रूप गोस्वामी को है। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी के द्वारा लोगों को ये भक्ति रस क्या है उसको देखने का आंक मिला है, उनका भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों के द्वारा। जो वो भाव और प्रेम का स्तर पे पहुंच गए वो भक्ति रस को आस्वादन करेंगे, तो उनको उसका समझने का जरूरत नहीं है। पर आम आदमी को वो प्रयोजन के द्वारा एक आकर्षण कैसे आएगा अगर उसको एटलीस्ट एक बुद्धि के स्तर पे कुछ समझने का साधन चाहिए, क्या है ये प्रयोजन। खाली सुन के समझ में नहीं आएगा, कुछ तो हमारा बुद्धि से उसको समझने का कुछ तो साधन चाहिए। तो रसम पश्येद् यदा तदि, रूप गोस्वामी ने ये भक्ति रस क्या है उसको देखने का आंक दिया। तो काफी आचार्यगण ने वो भक्ति रस को आस्वादन किया और भगवत धाम चले गए, पर आम आदमी के लिए क्या छोड़ा। उन्होंने भी काफी सारा ग्रंथ छोड़ा, उनका जीवन का जो उनका लाइफ है वो भी एक शिक्षा ही है, पर इसको एकदम सही तरह से समझने का ग्रंथों है वो रूप गोस्वामी ने ही छोड़ा। इसलिए रूप गोस्वामी को भक्ति रसाचार्य बोलते हैं, भक्ति रस आचार्य। तो ये ऑफ कोर्स एक ग्रंथ का विभाग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तब मैं वो पॉइंट को मैं और थोड़ा स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करूंगा। तो जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के बारे में लिखा भक्ति रसामृत सिंधु का जो बिगिनिंग में, obsessed by a desire to benefit all the devotees of the Lord, the esteemed author Srila Rupa Goswami compiled this remarkable work, the scripture called Bhakti Rasamrita Sindhu, using the rasa presented in Srimad Bhagavatam, which appeared within the lotus bud of this heart. तो बोलते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का रचना रूप गोस्वामी ने क्यों किया? उसका एकमात्र कारण था कृपा, कृपा का भावना, अनुकंपा का भावना। आम आदमी को कृष्ण प्रेम के प्रति आकर्षण कैसे आएगा, ये सोच के वो कृपा का जो परिवर्तित रूप है वो है भक्ति रसामृत सिंधु। और उन्होंने ये ग्रंथ कैसे लिखा, भागवतम का, भागवतम में अलग अलग जगह पे जो रस का वर्णन है आप देखेंगे, हम देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर कोई समझिए कि अलग अलग प्रकार का, देखिए कि नैनो मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसका साइंटिफिक जर्नल्स आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक करने पढ़ने से पहले उसमें से कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छा सा पढ़ लिया, जो कॉन्सेप्ट्स है वो सबको अच्छा सा समझ लिया, फिर वो जर्नल्स को पढ़ेंगे तो वो जो टेक्स्ट बुक में आप जो पढ़ के समझा वो सब जो कॉन्सेप्ट्स है कैसा वो जर्नल्स में उन्होंने प्रस्तुत किया है वो समझने को आपको मिलेगा, सही है ना। तो ये जो भागवतम इत्यादि पुराणों वो ग्रंथ है वो जर्नल्स जैसा है, उसमें क्या क्या भक्ति का जो सिद्धांत है, अलग अलग प्रकार का जो साधना भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है, उसका जो वर्णन डायरेक्टली नहीं है, एक लीला के द्वारा है। तो वो एक जर्नल जैसा है, उसको पढ़ के वो जो कॉन्सेप्ट्स को समझना उतना ईजी नहीं है। तो इसलिए हम जब दशम स्कंद को पढ़ेंगे या अलग अलग लीलाओं को पढ़ेंगे उसमें ये ओ इधर वीर्य रस है, वो इधर दास्य रस है, इधर ये रस का एक जो अलग अलग प्रकार का जो कॉम्पोनेंट्स है, अनुभव, विभाव, ये सब, ये जो रस का प्रेरणा क्या करता है, वो रस प्रकट होने के बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, वो सब हम उसको पढ़ के हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जो थियरी है वो थियरी हमने समझा नहीं। तो अगर आपको बोले देखो मैं आपको ना, आपको जितना जर्नल्स चाहिए मैं आपको दे देता हूं, जर्नल्स को पढ़ के आप टेक्स्ट बुक लिखो, ऐसे बोलूंगा तो आप कर सकते हैं क्या? टेक्स्ट बुक पढ़ के जर्नल्स को समझ सकते हैं, पर जर्नल्स को पढ़ के आप टेक्स्ट बुक लिख सकते हैं क्या? रूप गोस्वामी ने वो किया, पूरा जर्नल्स, भागवतम और भागवतम प्राधान्य है और बाकी अलग अलग प्रकार का पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण इत्यादि सबको पढ़ के टेक्स्ट बुक लिखा, किसके भक्ति रसाम सिंधु के रूप में। पर आम आदमी के लिए वो नहीं कर सकते, हमको पहले टेक्स्ट बुक करना पढ़ना पड़ता है, फिर वो टेक्स्ट बुक का जो प्रिंसिपल्स है वो भागवतम इत्यादि जर्नल्स में कैसा प्रकट हो रहा है वो हम समझ पाएंगे। तो भागवतों में जो रस का रचना किया है वो सबको कलेक्ट करके एक बहुत सिस्टमैटिक वे में भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेजेंट किया है रूप गोस्वामी ने। तो एक ये लोचनदास ठाकुर का एक लोचनदास ठाकुर धनमोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र या नरोत्तम दास ठाकुर कहे देना नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बहुत अच्छा भजन रचना किया धनमोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोर। तो उसमें ये एक पैराग्राफ आता है विचार कोरिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। माय कॉन्टेम्पलेशन टाइम इज स्पेंट रिलिशिंग द नेक्टर ऑफ डिवोशन हाइलाइटेड बाय पीरियोडिक कोटेशंस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मैं मेरा दिन का टाइम को कैसे बिताता हूं, भक्ति रस का आस्वादन करता हूं और वो भक्ति रस कैसे प्रकट होता है भागवतम का श्लोकों के द्वारा। तो रूप गोस्वामी ने वही किया, उन्होंने भागवतम का अलग अलग श्लोकों को लिया और उसके द्वारा वो भक्ति रस क्या है उसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो चैतन्य चरितामृत में कैसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को भक्ति रस शास्त्र का ज्ञान दिया उसका मध्य लीला में 19वां अध्याय में है। प्रभु का है शुन रूप भक्ति रसेर लक्षण सूत्र रूपे का ही विस्तार नाया वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हे रूप गोस्वामी अभी आप सुनो, ये जो शुद्ध भक्ति का वर्णन है ये एक सागर जैसा है, इसका पूरा विस्तार में तो मैं वर्णन नहीं करूंगा, वो तो आपका काम है, मैं सूत्र रूप में आपको बताता हूं, उसको आप विस्तार रूप में प्रकट कीजिए। पारा पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु तो माया चकाइते तारा कही एक बिंदु। ये जो भक्ति रस का ये जो सागर है सिंधु है इसका लेंथ और ब्रेथ को क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई को कोई माप नहीं कर पाएगा। तो पर आपको इसका एक थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं थोड़ा आपको बोलता हूं, बोल के चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्ति रस का जो महिमा है वो रूप गोस्वामी को सिखाया। किधर सिखाया? दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट किधर है? वाराणसी प्रयाग। तो अभी हम समझेंगे ये भक्ति रसामृत सिंधु क्या है और गौड़ी वैष्णवों के लिए ये जो ग्रंथ है इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये समझने का प्रयास करेंगे। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये डेफिनेशंस को क्या बोलेंगे, ये एक परिभाषाओं का ग्रंथ है, इसमें सब परिभाषा है क्योंकि हम अलग अलग शब्दों का भक्ति में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं पर मोस्टली उसका सच्चा डेफिनेशन हम जानते नहीं। सही जो डेफिनेशन है हम बोलते हैं कि या बोलेंगे हम प्रभु जी हम दोनों के बीच में थोड़ा रसाबास है ऐसा बोलेंगे, मतलब जमता नहीं उसको भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु का लैंग्वेज में बताएंगे हम दोनों का रसाबास है, अरे वो दोनों के बीच में ना अच्छा सक्य रस है ऐसे बोलेंगे। या ये बहुत रसिक भक्त है ऐसे। तो पर ये सबका एकदम ऐसा वेग मीनिंग नहीं है, ये सबका बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन दिया हुआ है रूप गोस्वामी ने। अगर इसको समझेंगे तो इसका ये सब शब्दों का एक तरफ से सही अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगा ही, और उसको उसका दुष्प्रयोग नहीं करेंगे हम। तो डेफिनेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो इसमें प्रिसाइज, प्रिसाइज को क्या बोलेंगे, थोड़ा मतलब थोड़ा हमारे लैंग्वेज में एकदम स्पष्ट स्पष्ट परिभाषा दिया हुआ है इसमें बकर सामसन में। जैसे भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, रस क्या है, भाव क्या है, अलग अलग प्रकारों को रसा क्या है, वो ये सब का एकदम स्पष्ट रूप से उन्होंने परिभाषा किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। पर लोग पूछेंगे तो एकदम स्पष्ट परिभाषा का क्या जरूरत है, ये थोड़ी हम साइंस पढ़ रहे हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या है H2O2, ये थोड़ी हम साइंस पढ़ रहे हैं इधर, हम तो भक्ति पढ़ रहे हैं, भक्ति को भावनाओं के बारे में है, तो उसके लिए स्पष्ट परिभाषा का क्या जरूरत है। मेरा जो भावनाओं को एक डेफिनेशन का रूप में मैं बोल सकता हूं क्या, वैसे बोल पूछ सकते हैं। तो पर क्या है, अगर हमको एकदम स्पष्ट परिभाषा एक शब्द के बारे में नहीं है तो एकदम हम वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे मैं भक्ति के बारे में बोलूंगा, मेरा विचारों को प्रकट करूंगा, आप भक्ति के बारे में आपका विचारों को प्रकट करेंगे, अगर हम दोनों को वो भक्ति शब्द का अंडरस्टैंडिंग ही अलग अलग है तो हम एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारा ग्रंथों में भक्ति का मतलब है अन्याभिलाषिता शून्यम, उसमें कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए। ये जब भक्ति ग्रंथों या हमारा जो वैदिक ग्रंथ है जब भक्ति के बारे में बताता है तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो भक्त है उसको कुछ भौतिक इच्छा नहीं है। पर हम जब भक्ति के बारे में आम आदमी जब बात करेगा तो उसको अंदर पूरा भौतिक इच्छा भरा है और वो भक्ति करके वो भौतिक इच्छा को पूर्ति करना चाहता है वो, और वो सच में भक्ति ही है क्या, इसके लिए हमको डेफिनेशन समझना पड़ेगा ना। और ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो भक्ति शब्द है ये भगवान विष्णु को ही लागू है, बाकी देवता देवी देवताओं को के प्रति जो आदर सम्मान है उसको आप भक्ति बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति शब्द का वही अर्थ है विष्णु के प्रति। पर हम आज का जमाने में देखते हैं लोग बोलते हैं कि देशभक्ति समाज भक्ति ऐसा सब शब्द है ही नहीं, क्योंकि भक्ति का मतलब है विष्णु के प्रति। पर प्रयोग में क्या है देखेंगे तो बहुत कुछ है जो डेफिनेशन के अनुसार नहीं है। और संस्कृत भाषा में देखेंगे तो एक शब्द का अनेक प्रकार का अर्थ है, कभी कभी एक ही जो श्लोक में वो एक शब्द का अलग अर्थ होता है। जैसे आप देखेंगे कि भगवत गीता का 6वां स्कंद में बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। इधर ये आत्मा का वर्ड बहुत सारा बार आता है, उसमें एक बार आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, एक बार आत्मा का अर्थ है मन, एक बार आत्मा का अर्थ है बुद्धि। तो एक ही जो श्लोक में तीन प्रकार का अर्थ है एक ही शब्द शब्द को, तो इसलिए हमको कुछ इंटेलिजेंटली बात करना है। तो इंटेलिजेंट डिस्कशन होना है तो हमको कॉमन डेफिनेशंस चाहिए। हम दोनों को अलग अलग जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका डेफिनेशंस है जो कॉमन डेफिनेशंस चाहिए, तभी हम इंटेलिजेंट डिस्कशन कर पाएंगे। अभी भक्ति रस का मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है, तो एक ही शब्द को प्रयोग करके हम दो घंटा तीन घंटा बात कर रहे हैं तो उसका कुछ यूजफुल अंडरस्टैंडिंग आएगा नहीं आएगा। तो कोई भी एक कॉन्वर्सेशन होने से पहले जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वो अलग अलग प्रकार का जो शब्द जो हम प्रयोग करने वाले हैं उसका कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो हम भक्ति का जो जीवन में जो भी शब्दों को प्रयोग करेंगे और जो भी हम जिसको पाने का प्रयास करेंगे, जिसका साधना करने का प्रयास करेंगे, वो सब एग्जैक्टली क्या है वो परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु देता है। तो इसलिए इफ यू वांट टू हैव अ फिलॉसफी दैट इज इंटेलिजेंट एंड एक्सेप्टेबल इट हैज टू हैव प्रिसाइज डेफिनेशन। तो इंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धि है पर एनीवे आप समझ गए। तो ये हमने डिस्कस किया, भक्ति तो साइंस नहीं है, साइंस तो भौतिक है मटेरियल है, भक्ति तो मटेरियल नहीं है आध्यात्मिक है। एक आध्यात्मिक चीज को एक आप एक परिभाषा में कैसे आप कन्फाइन करेंगे, व्याख्या व्याख्या डेफिनेशन। दिस इज ट्रू सही है। रूप गोस्वामी भी वही बोलते हैं कि ये जो भक्ति है इसको तर्क के द्वारा आप समझ नहीं सकते, इसके लिए थोड़ा रुचि चाहिए, थोड़ा श्रद्धा चाहिए। और वो जो रुचि है श्रद्धा है वो अनुभूति के द्वारा, मतलब जो एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस के द्वारा डेवलप होता है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तो बुद्धि से आप भक्ति को समझ नहीं पाएंगे, वो रूप गोस्वामी भी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। पर इंटरेस्टिंगली ये जो बुक है इसको बहुत ही एक लॉजिकल लॉजिकल को क्या बोलेंगे, एक एक तार्किक तार्किक हाँ ठीक है, तो वो वैसा प्रस्तुत किया है एकदम एकदम स्ट्रांग युक्ति के द्वारा। अब पर इसको हम कैसे समझेंगे, एक तरह से बोल रहे हैं कि इसको आप रुचि और श्रद्धा से ही समझ पाएंगे और बुद्धि से नहीं। पर जो ग्रंथ रचना किया वो एकदम बुद्धि का प्रयोग करके, एकदम बुद्धि को यूटिलाइज करने के बिना आप समझ नहीं पाएंगे उसको। तो इसको कैसे हम, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है विरोधाभास है इसको आप कैसे समझेंगे। तो रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि मीनिंग, और वो बोलते हैं कि उत्तम अधिकारी जो है और शास्त्र और युक्ति में बहुत निपुण होना चाहिए। जो भक्ति का जो उत्तम अधिकारी है जो युक्ति है लॉजिक है उसमें निपुण होना चाहिए। और दूसरा तरह से बोलते हैं कि लॉजिक युक्ति से आप समझ नहीं पाएंगे, तर्क से समझ नहीं पाएंगे। तो रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं शुष्क तर्क है जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, जो खाली हमारा प्रत्यक्ष के ऊपर ही निर्भर है, हमारा अनुभूति के ऊपर ही निर्भर है, वैसा तर्क हम भक्ति को समझने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पर शास्त्र का एक युक्ति है, ये जो शास्त्र का युक्ति है, शास्त्र का जो तर्क है, और दिव्य अनुभूति का के अनुसार है, वो हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, पर उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा श्रद्धा के अनुसार। तो वो जो युक्ति है उसके द्वारा हम भक्ति को समझ सकते हैं। तो इसको ही शब्द प्रमाण बोलते हैं। ये जो हमारा अभी जो लॉजिक है उसमें बैठेगा नहीं वो, पर शास्त्र अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, पर वो स्तर पे भाव या प्रेम का स्तर पे मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं भी वो समझ पाऊंगा, मेरा तर्क, मेरा प्रत्यक्ष भी मैं भी इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति कर पाऊंगा। वो समझ के हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले। वो जो युक्ति है, शास्त्र का युक्ति है, वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज, तो जब आचार्यगण ये जो फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं, वो अपने बुद्धि को प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, जब हम कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं तो हमको हमारा बुद्धि को बंद करके बैठना पड़ेगा, वैसा नहीं है। पर बुद्धि को शास्त्रों के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो प्रभुपाद जी ने ही बोला कि गुरु साधु शास्त्र तीनों का मिलन है कि नहीं हमको देखना पड़ेगा। अगर आप शास्त्रों को जानते नहीं, वो उसको समझने का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कोई एक साधु कुछ बोल रहे हैं वो शास्त्र के अनुसार है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो शास्त्रों को समझने के लिए तो हमारा बुद्धि को प्रयोग तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शंस या उपदेश देते हैं। अभी भगवद्गीता में ही ले लीजिए, भगवद्गीता में बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्बुर माते संगोस्तु अकर्मणि। बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपका वर्णाश्रम ड्यूटीज क्रियाओं को आप छोड़ नहीं सकते, पर डिटैच्ड एक अनासक्त रूप से आपको आपका वर्णाश्रम का क्रियाओं को करना पड़ेगा। फिर बाद में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़ दो और मेरे प्रति आप शरणागत हो जाओ। तो आप एक प्रकार से देखेंगे तो ये दोनों भगवद्गीता में ही है, पर दोनों एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है, कॉन्ट्रडिक्टरी आदेश है। एक में बोलते हैं कि आपका वर्णाश्रम क्रियाओं को अनासक्त रूप से करो, और दूसरा वर्ष में बोलते हैं कि आप सब वर्णाश्रम क्रिया इत्यादि क्रियाओं को छोड़ दो और मेरा प्रति शरणागत हो जाओ। तो इसमें तो हमारा बुद्धि को थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को तो एक तरह से हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि मेरा अधिकार क्या है और मेरा अधिकार के अनुसार कौन सा ये आदेश को मुझे पालन करना पड़ेगा। हाँ, अगर किसी को कर्म का अधिकार है तो उसको वो पहला जो है कर्मण्येवाधिकार अस्ति उसको फॉलो करना पड़ेगा, और किसी का भक्ति का अधिकार है तो उसको सर्वधर्मान परित्यज्य का फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरा बुद्धि को बंद कर दूंगा, ये जो वर्ष आता है वो मेरे लिए, ये जो वर्ष आता है वो मेरे लिए, ये जो वर्ष आता है मेरे लिए, तो सब कुछ फिर आप सोचेंगे कि अभी मैं क्या करूं, ये तो बहुत विरोधाभास दिख रहा है इधर। तो इसलिए जो शास्त्रों का जो युक्ति है उसको समझने के लिए हमारा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर युक्त वैराग्य के बारे में तो सुना होगा आपने बहुत बार। हाँ, युक्त वैराग्य मतलब जो जो भी है उसको कृष्ण का सेवा में लगाना। खुद का जो इच्छा नहीं, मतलब आत्मेंद्रिय प्रीति, हमारा खुद को इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं लगाना चाहिए, भगवान का इंद्रिय प्रीति के लिए तो लगाना चाहिए। तो ये माइक को लगाना चाहिए, अभी वो कर रहे हैं हम, माइक को कृष्ण कथा में लगा रहे हैं, लैपटॉप को भी लगा रहे हैं। जो लैपटॉप को बाहर का दुनिया में क्या क्या चीज के लिए यूज करते हैं, उसको हम कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो बुद्धि को क्यों नहीं यूज करेंगे? करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो युक्त वैराग्य में तो बुद्धि भी आएगा, तो उसको शास्त्र समझने में तो लगाना ही पड़ेगा। तो वही रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि लगाओ, और उन्होंने भी लगा के एकदम एक बहुत लॉजिकल वे में भक्ति को पहले रचना किया, भक्ति क्या है, फिर भक्ति रस क्या है, वो रस कैसे बनता है और उसको कैसे पीना चाहिए, और पीने के बाद आपका परिणाम क्या होता है, बाह्य रूप से परिणाम क्या होता है, अंदर का अंतरंग रूप से परिणाम क्या होता है, वो सबका एकदम क्लियर कट एक्सप्लेनेशन किया है रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ में। तो रूप गोस्वामी ने ये शास्त्र युक्ति के द्वारा भक्ति क्या है, अलग अलग प्रकार का भक्ति क्या क्या होता है, ये भक्ति करने का अधिकार क्या है, रस क्या है और रस कैसे बनता है, ये सबके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है। यह है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन बोल के प्रभुपाद ने लिखा, उसका हिंदी भी ऑफकोर्स भक्ति रसामृत सिंधु ही दिया है, तो इसलिए आपको यह समझने का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर ये प्रभुपाद ने जो रचना किया है वो भक्ति रसामृत सिंधु, और रूप गोस्वामी ने लिखा है वो भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर है कि नहीं? तो ये जो प्रभुपाद ने जो नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखा है वो भक्ति रसामृत सिंधु का ट्रांसलेशन क्या बोले, भाषांतर नहीं है, पर वो क्या है, समरी स्टडी है। जैसे दशम स्कंद के लिए कृष्णा बुक, वो वर्स बाय वर्स नहीं है, वैसा जो वर्स है फिर वर्ड टू वर्ड मीनिंग है फिर ट्रांसलेशन है फिर परपोर्ट है, अनुवाद और तात्पर्य, वो सब नहीं है। उसको वो स्टोरी लाइन को लिया, उसको समराइज किया, बीच बीच में थोड़ा प्रभुपाद जो परपोर्ट लिखना चाहते हैं वो बीच बीच में लिख दिया फिलॉसफी, तो समरी कर दिया, समरी स्टडी बोलते हैं उसको। जैसे चैतन्य चरितामृत के लिए प्रभुपाद ने समरी स्टडी बनाया टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बोल के, और दशम स्कंद के लिए कृष्णा बुक लिखा। तो वैसे ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है जो प्रभुपाद ने जो रचना किया वो रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु का एक समरी स्टडी है, वैसे कृष्णा बुक जैसा। अगर आप जो प्रभुपाद ने जो लिखा है और रूप गोस्वामी का श्लोक क्रमांक आप उसके हिसाब से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने ऑलमोस्ट जो रूप गोस्वामी ने जो दिया सब कुछ कवर कर दिया उनका भक्ति रसामृत सिंधु में। पर उन्होंने सोचा कि अरे ये सब तो थोड़ा मेरा ऑडियंस के लिए बहुत ऊपर से जाएगा, तो उसको एकदम विस्तारित रूप में जो रूप गोस्वामी ने रचना किया वो वैसा ही नहीं किए, उसको एकदम छोटा करके समझने लायक जो चार पेज में रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया उसको एक पैराग्राफ में कर दिया प्रभुपाद, इतना आप समझो काफी है। और जो चीज है जो रूप गोस्वामी ने उतना ज्यादा विस्तार में एक्सप्लेन नहीं किया, पर जब प्रभुपाद सोचे कि अरे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अच्छा तरह से देना चाहिए, प्रभुपाद ने एक पैराग्राफ को चार पन्ना में भी विस्तार रूप में एक्सप्लेन किया है। तो एग्जैक्ट एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं किया प्रभुपाद ने, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है वो उनका, तो इसका परिणाम क्या है? रूप गोस्वामी ने कितना साल पहले भक्ति रसामृत सिंधु लिखा? 500 साल, कम से कम 500 साल पहले। और प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन कितना साल पहले लिखा? 50 साल एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 1970 में पब्लिश हुआ, अभी 2019 ईयर, ऑलमोस्ट 50वां साल। 500 साल पहले, ऑलमोस्ट 550 साल पकड़िए, 550 साल पहले रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु का रचना किया। खाली 50 साल पहले प्रभुपाद ने नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखा। अभी देखेंगे तो रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद का ग्रंथ द्वारा कोटि कोटि भक्त लोगों को पहुंच गया। जितना 500 साल में गिन चुन के एक 2000-3000 भक्तगण, समझे कि 10,000 भक्तजन भक्तगण भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े होंगे रूप गोस्वामी का, पर 50 साल में इतना इजी फॉर्म में, और वो भी अंग्रेजी भाषा में, रशियन भाषा में, जर्मन में, चाइनीज में, सब भाषाओं में उसको क्या बोलते हैं, उसको भाषांतर कर चुके हैं। तो इतना लोग पूरा विश्व भर में पढ़ लिया। अगर उन्होंने एज इट इज रूप गोस्वामी का प्रसन्न करते थे तो काफी लोग उसको समझने को बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए पर माइक हिंदी में
प्रभुपाद ने, क्योंकि मैंने खुद का प्रभुपाद का लेक्चर सुना जब भक्ति रसामृत सिंधु समरी स्टडी नेक्टर ऑफ डिवोशन उन्होंने लिखा था, कि अभी मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं आपको समरी स्टडी के रूप में दे रहा हूँ, जैसे उन्होंने कृष्णा दिया था, क्योंकि पता नहीं था
दशम स्कंद वो लिखेंगे क्या नहीं।
तो वैसे ही, क्योंकि ये बड़ा ग्रंथ है और इसको
पूर्ण रूप से
लिखने के लिए मेरे को समय मिलेगा ना, इसलिए मैं अभी से पहले ही आपको मैं समरी फॉर्म पे दे रहा हूँ करके ऐसा
प्रभुपाद बोलते हैं। तो इसलिए ये जो कृष्णा बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जो दशम स्कंद का रिप्लेसमेंट नहीं है। दशम स्कंद में जो सो वर्स बाय वर्स एक्सप्लेन किया है और उसका परपोर्ट्स है, कृष्णा बुक का एक अलग स्थान है, दशम स्कंद का एक अलग स्थान है। एक दूसरा का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। जैसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का एक स्थान है, अपना एक स्थान है, और चैतन्य चरितामृत का अपना एक स्थान है, एक का रिप्लेसमेंट दूसरा नहीं हो सकता है। वैसे ही जो एनोडी का एक स्थान है, पर उसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन किया है उसको पूरी तरह से समझने के लिए आप ओरिजिनल टेक्स्ट रेफर करेंगे तो उसका थोड़ा और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसमें। तो
एक प्रश्न है कि अभी जो आप कह रहे हो कि समरी, प्रभु जी अभी आप ये कह रहे हो कि ये समरी स्टडी है जो कि प्रभुपाद जी ने लिखा 50 साल पहले, और जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो तो 550 साल पहले लिखा गया था, तो वो किताब में मतलब कौन सी भाषा में है?
वो संस्कृत में है।
संस्कृत में है, और उसका परपोर्ट और ट्रांसलेशन है या
है? अभी भानुस्वामी उसका ओरिजिनल टीका जीव गोस्वामी ने लिखा था, दुर्गम संगमनी टीका बोल के, फिर कुछ 200 साल बाद शिलोशना चक्रवर्ती ठाकुर ने उसका भक्ति सार प्रदर्शनी बोल के एक और टीका लिखा, फिर अलग अलग आचार्यों ने बहुत सारा टीका लिखा भक्ति रसाम सिंधु का। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ही 2 टीका लिखा, एक भक्ति सार प्रदर्शनी लिखा और एक भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा, और बहुत सारा टीकाएं हैं, पर 2 प्रसिद्ध टीका है, एक जीव गोस्वामी का और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। ये दोनों का अंग्रेजी में भाषांतर हिसोलनस भानुस्वामी महाराज ने किया है, और वो अवेलेबल है, प्रभु जी का हाथ में भी है वो, अगर किसी को इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। वो पार्ट वन है, ऐसा एक और पार्ट है। तो ठीक है, तो अभी देखेंगे ये जो ग्रंथ है इसका विभाजन कैसे किया हुआ है रूप गोस्वामी ने। जैसा ये ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु है, सिंधु का मतलब सागर। जैसा एक सागर में ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का हिंदी में एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वो पता है, पर कौन सा क्या है पता नहीं, नहीं वही है पर वो एग्जैक्टली क्या है पता नहीं मुझे। तो ये जो जैसे एक सागर को भी उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा रहता है, वैसे ये जो भक्ति रसामृत सिंधु ये सागर का भी चार दिशा है। तो ये बुक को पहले चार डिवीजन में विभाजन किया है उन्होंने, उसमें जो ईस्ट इस उत्तर ना पूरब, ये जो पूरब दिशा है वो ही हमारा भक्ति शास्त्री का जो पोर्शन है पहला 19 चैप्टर नेक्टर ऑफ डिवोशन में, तो वो पूरब दिशा ही है। बाकी तीन दिशा हम भक्ति शास्त्री में नहीं पढ़ते हैं, पर आगे में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए नहीं है, तो वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखेंगे। ठीक है, पहले क्या क्या है देखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं। ये जो पहले ये पूरब पूर्व ये पूर्व दिशा में, और ये जो ओशन में वेव्स रहता है लहरें, तो उसका चैप्टर्स को लहरें के रूप में उन्होंने विभाजित किया है। तो पूर्व दिशा में चार लहर है और दक्षिण दिशा में पांच लहर है और पश्चिम दिशा में और पांच लहर है और उत्तर दिशा में नौ लहर है, ऐसा। तो ये जो पूर्व दिशा में जो चार लहर है ये क्या है, उसमें पहला लहर में ओवरव्यू ऑफ डिवोशन, मतलब भक्ति का एकदम सामान्य भक्ति। तो सामान्य भक्ति, भक्ति का लक्षण क्या है, भक्ति क्या है, उतना ही दिया है। और जो दूसरा लहर है उसमें साधना भक्ति के बारे में लिखा है रूप गोस्वामी ने, साधना भक्ति। और तीसरा जो लहर है उसमें भाव भक्ति के बारे में लिखा है, और चौथा लहर है उसमें प्रेम भक्ति के बारे में लिखा है। यह है पूर्व पूर्व दिशा में। फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर ये तीनों दिशा में भक्ति रस के बारे में लिखे, भक्ति के बारे में खाली पूर्व दिशा में लिखे और भक्ति रस के बारे में बाकी तीन में लिखे। तो ये जो बुक है भक्ति अमृत सिंधु नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ का रचना करने का प्राइमरी पर्पस है, मुख्य कारण है भक्ति रसा के बारे में लिखने के लिए। वो भक्ति रसा को समझाने के लिए वो पूर्व दिशा में भक्ति के बारे में लिखते हैं। तो इसलिए हम भक्ति के बारे में पढ़ के भक्ति रसा के बारे में आगे कभी भी नहीं पढ़ेंगे तो वो बुक का पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। ऑफकोर्स भक्ति रसों के रसा के बारे में समझने के लिए भी थोड़ा अधिकार चाहिए, पर वो रूप गोस्वामी का अपेक्षा है कि जो भी ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आए वो उनका अधिकार बढ़ाए और ये जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसको पूर्ण रूप से पढ़ के उसको आस्वादन करें और उसका प्रयोजन को प्राप्त करें। वो रूप गोस्वामी का इच्छा है, वो ही अपेक्षा है रूप गोस्वामी को सब गौड़ीय वैष्णवों से। तो भक्ति शास्त्री का टाइम पे तो हम ये पूर्व दिशा का समझेंगे, पर आगे हम हमारा हमसे ये उत्तरदायित्व है कि अपेक्षा है कि हम आगे भक्ति में आगे बढ़े और वो ये भक्ति रसा के बारे में भी पढ़ने का अधिकार को प्राप्त करें और ये सब ग्रंथों को पूर्ण रूप से पढ़ के आस्वादन करें और भक्ति में आगे बढ़ें। तो ये जो सदन पार्ट है, दक्षिण पार्ट है, उसमें ये जो भक्ति रसा बोलते हैं, ये क्या है ये भक्ति रसा? अगर अभी हम आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट में पोंगल खाया, पोंगल, ये पोंगल बनाने के लिए आपको राइस चाहिए, मूंग दाल चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, नमक चाहिए, थोड़ा घी चाहिए, काला मिर्च चाहिए और थोड़ा जीरा और थोड़ा काजू घी, तो ये सब चाहिए। हाँ, ये सब सही, और एक अच्छा कुक चाहिए। हाँ, तो वो सबको, नहीं तो सबको डाल के उबालेंगे तो वो पोंगल नहीं हो जाएगा। हाँ, तो कब मूंग दाल को उबालना है, कब राइस को उबालना है और काजू को कितना रोस्ट करना है, नहीं तो काला काला हो जाएगा। हाँ, तो जैसे पोंगल बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स को मतलब सामग्री है, वैसा रसों रस जैसा बनता है उसका भी सामग्री है। तो ये जो पांच है, विभाव, अनुभव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये पांच को सामग्री भाव बोलते हैं। जैसे पोंगल बनाने का ये सब सामग्री है, रस को बनाने के लिए भी ये सब सामग्री है। तो रसा को एक बहुत साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया है रूप गोस्वामी ने, सामग्री भाव। जैसे इसमें से कुछ हम हमारा भौतिक रसों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो भक्ति रस है जो तीन गुणों से परे है, एकदम आध्यात्मिक है, पर हमारे एक भौतिक दुनिया में जो हमारा आदान प्रदान है, जो और वो जो रिलेशनशिप्स है उसका उसमें मिलजुल है। इसलिए जब रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु का रचना किया, उन्होंने भरत मुनि ने जिन्होंने भरतनाट्यम का जो नाट्य शास्त्र लिखा है, वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को ही लेके उसमें से जो उन्होंने जड़रसों का ही वर्णन किया है, उन्होंने ये भौतिक जगत में एक पुरुष और स्त्री के बीच में और माता और पुत्र के बीच में या दो सखाओं के बीच में जो रस है उसका ही वर्णन है नाट्य शास्त्र में, पर क्योंकि ये जो आध्यात्मिक रस है, भक्ति रसा में भी कुछ कुछ चीज में एक एकदम सिमिलर है, एक बाह्य रूप में सिमिलर है, तो इसलिए ये जो हम कुछ ये जो सामग्री रसा है इसका थोड़ा एकदम संक्षिप्त रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ये बुक में और आगे क्या है आपको वो समझने का थोड़ा एक इम्पिटस, एक प्रेरणा मिलेगा हमको। तो पहला है विभाव। विभाव का मतलब है जो वो भक्ति रसा का जो इंस्पिरेशन देता है वो विभाव है। अभी देखिए, एक रिलेशनशिप में दो चीज चाहिए, पहला है मतलब बेसिकली टू दो लोग चाहिए, जैसे कृष्णा और भक्त के बीच में भी जब आदान प्रदान है उसके लिए भक्त चाहिए और भगवान चाहिए, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं कि आलंबनम। आलंबनम मतलब सपोर्ट। ये रस का जो फ्लो है उसके लिए दो सपोर्ट चाहिए, एक है भगवान, एक है भक्त। भगवान को बोलते हैं कि विषय आलंबना और भक्त को बोलते हैं कि आश्रय आलंबना। तो जब भगवान, जब जो भक्त है वो वात्सल्य भाव में रहता, वात्सल्य भाव में है, वात्सल्य रस में है, तो कृष्णा कौन सा फॉर्म में है? बाल रूप में। जैसे जब एक छोटा बच्चा रहता है वो माता पिता को उनके प्रति एकदम आसक्ति सबसे ज्यादा रहता है तब, और जब भक्त सक्य रस में रहता है तो कृष्णा का रूप पौगंडा अवस्था में रहता है, एकदम 8-9 साल का जब रहते हैं तब खेल कूद में एकदम इच्छा रहता है, तो वो फॉर्म, वो आश्रय आलंबन है, विषय आलंबन है। जब भक्त माधुर्य रस में रहते हैं तो कृष्ण कैशोर रूप रहते हैं, वैसा विषय आलंबन आश्रय आलंबन। पर कभी कभी ये जो भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए दूसरा आदमी का भी जरूरत नहीं पड़ता है, अगर प्रेम एकदम गाढ़ रूप में है, वो व्यक्ति का संबंधित कुछ वस्तुओं को देखने से भी हमको वो याद आ जाता है। जैसे मैं एक बचपन से ही एक बोर्डिंग स्कूल में था, बोर्डिंग स्कूल मतलब हॉस्टल, तो एक वो एक मिलिट्री स्कूल था, सैनिक स्कूल बोलते थे, तो उसमें लाइफ थोड़ा एटलीस्ट इनिशियल रूप इनिशियल टाइम पे बहुत मुश्किल रहता था। तो बहुत मारपीट होता था, मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स को और सीनियर्स, पनिशमेंट मिलता था कुछ छोटा छोटा चीज के लिए, हाँ छोटा छोटा त्रुटियों के लिए पनिशमेंट मिलता था। तो कभी कभी घर का बहुत याद आता था, तो मैंने मेरा पिताजी का एक धोती लेके गया था किधर, मेरा हॉस्टल में। तो कभी बहुत पिटाई हो गया और घर का बहुत याद आया तो चुपके से मेरा लॉकर को खोल के वो धोती को बाहर निकाल के उसको आलिंगन करता था, तो एकदम बहुत थोड़ा सुख का अनुभूति होता था। तो इधर पिताजी तो नहीं है सामने, पर उनका संबंधित एक वस्तु से भी वो रस का प्रकट होता है कि नहीं। तो जैसे एक माँ को अपना बेटा कुछ कहीं पे गया है और उसका एक शर्ट हो या उसका एक शू हो या उसका कुछ भी वस्तु हो उसका संबंधित, उसको देख के उसका याद आता है, हाँ? तो वैसे उसको, इसको क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं, हाँ? हमारा इसमें भी उद्दीपन बोलते हैं ना, उद्दीपन। तो ये जो विभाव है, ये जो एक सामग्री रस है जो ये रस को स्टार्ट करता है, जैसा लाइटर रहता है जो एलपीजी गैस को स्टार्टर करता है, ये जो स्टार्टर है ये विभाव, तो स्टार्ट करने के बाद और ये जो स्थाई भाव है, अभी मेरा एक अनजान व्यक्ति से कुछ रिलेशनशिप तो नहीं रहेगा, अभी भागवत श्रवण प्रभु है उनके साथ मेरा एक दोस्त का संबंध है, तो वो है स्थाई भाव। तबर इधर हम बोल सकते हैं कि सक्य भाव है, पर एक अनजान व्यक्ति से तो सक्य भाव तो नहीं हो सकता है ना। तो एक बेसिक रिलेशनशिप का जरूरत है। तो अभी मेरा मदर मेरा फोटो देख के उनको मेरा याद आएगा, किसी और का फोटो देख के याद नहीं आएगा, क्योंकि मेरे साथ उनका एक संबंध है, स्नेह संबंध है कि नहीं। तो उसको स्थाई भाव बोलते हैं। ये पांच प्रकार का स्थाई भाव है, एक है शांत भाव, दास्य भाव, सक्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ठीक है। तो ये एक सामग्री भाव है। सो विभाव देख लिया हमने और स्थाई भाव देख लिया। फिर व्यभिचारी भाव बोल के एक है, व्यभिचारी या संचारी भाव बोल के, ये कभी कभी, अभी देखिए कि इधर कुछ बच्चे लोग घूम रहे हैं, तो अभी ये प्रोग्राम के बाद सोचिए कि उनका मदर उनको रोड क्रॉस करवा रहे हैं, तो सडनली एक बच्चा हाथ को छोड़ के सब भागना शुरू करेगा तो मदर क्या करेंगे? हाँ? उसको पकड़ के थोड़ा एक तप्पड़ मारेंगे, पर वो जो तप्पड़ है किधर से आ रहा है? वो प्रेम से आ रहा है कि नहीं? तो कभी कभी, पर ऐसा नहीं है कि दिन भर उनको मारते रहेंगे, वो आएगा अपना प्रेम को दिखा के फिर चला जाएगा, तो वैसा संचारी भाव बोलते हैं। तो कभी कभी यशोदा माता को भी कृष्ण के प्रति बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कभी कभी वो बंदरों के साथ जाके खेलते रहते हैं, तो कुछ लग गया तो वो काट के रख दिया, तो कभी कभी यशोदा माता को लगता था कि इसको एक छड़ी लेके के इसको मैं पिटाई करना चाहिए, पीटना चाहिए। तो वो क्या है? संचारी भाव है एक। हाँ, संचारी व्यभिचारी सेम। हाँ, सेम है संचारी व्यभिचारी। व्यभिचारी का व्यभिचारी का वो गलत अर्थ नहीं है इधर, उसका एक क्या बोलते हैं नेगेटिव कनोटेशन, जो हम प्रॉस्टिट्यूट बोलेंगे वो मतलब नहीं है इधर। व्यभिचारी मतलब जो मूव करता रहेगा, एक जगह पे रुकेगा नहीं, जैसा एक पुरुष के साथ जो नहीं रहते हैं उसको व्यभिचारी बोलेंगे, 1 2 3 4 चेंज करते रहेंगे। तो ये जो मतलब संचारी, जो संचार कर रहे हैं, तो ऐसा ये संचारी भाव है, ये आएगा पर रुकेगा नहीं। स्थाई भाव जैसा है रुकेगा, एक माता का उनका बेटा या बेटी के प्रति स्थाई भाव है, फिक्स्ड रिलेशनशिप। पर वही माता को अपना बेटा या बेटी के प्रति संचारी भाव भी आके जाता है, प्रेम से उत्पन्न हुआ संचारी भाव। जैसे यशोदा माता को कृष्ण को कभी छड़ी से पीटने का इच्छा आता है, उसको बंदरों से बचाने के लिए, पर वो आके चला जाता है, वो प्रेम को दर्शा के चला जाता है, वो संचारी भाव है। अगर संचारी भाव स्थाई भाव बन गया तो रिलेशनशिप ही टूट जाएगा। अगर यशोदा माता छड़ी लेके पीटते ही रहेंगे कृष्णा को ऑलवेज, तो वात्सल्य भाव ही नहीं रहेगा। तो संचारी भाव का शोभा यह है कि वो आके चला जाना चाहिए, वो जाने में उसका शोभा है, आके चला जाना चाहिए। तो इसलिए उसको स्पेशल इफेक्ट्स बोल रहे हैं प्रभु जी। तो वो भी एक ये है, तो वो संचारी भाव है, वो भी एक हमारा जो संबंध में, वो भी एक स्पेशल रुचि को देता है। अगर बच्चा एक ट्रैफिक रोड में माँ का हाथ छोड़ के भाग रहा है और माता को कुछ भी हुआ नहीं, तो कैसा है वो अच्छा नहीं रहेगा। माता को तब वो बच्चा को पकड़ के एक देना चाहिए, ताकि वो बच्चा समझे कि ये करना नहीं चाहिए बोल के, क्योंकि उसका जीवन खतरा में है कि नहीं। तो वो है संचारी भाव। तो अभी स्थाई भाव, विभाव और संचारी भाव देख लिया, और सात्विक भाव। सात्विक भाव क्या है? कभी ये सात्विक भाव और अनुभव मोर ऑर लेस सिमिलर है, उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन से मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, तो दोनों को एक साथ में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कभी मैं जो वो मेरा पिताजी का वो धोती को लेके आलिंगन करता था, कभी पिताजी का याद आता था और मेरा आंसू आ जाता था। तो जब वो स्नेह संबंध का जो आदान प्रदान रहता है, तब वो जो उसका जो आस्वादन करने के द्वारा कभी कभी बॉडी में अपने आप एक स्वाभाविक रूप में कुछ विकार प्रदर्शन हो जाता है, कभी रोमांच हो जाता है, कभी हमारा क्या बाल कड़े हो जाते हैं, कभी आंसू बहना शुरू हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं है कि अभी मैं रोऊंगा वैसे सोच के नहीं, अपने आप आ जाता है। कभी इतना इमोशन हो जाता है कि हमारा बोलने को नहीं होता है, एकदम गदगदी हो जाता है। नयनम गलद श्रुदारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वैसे चैतन्य महाप्रभु अभी वो माता जी वो बच्चा को मारने के लिए आए, मारूंगा भागेगा तो ऐसे हाँ। तो ये बोलते हैं कि तो ये सब हमारा रेगुलर संबंध में हम देख सकते हैं, माता पिता का हाँ, बच्चों के द्वारा या सखाओं के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये सब ये हम भौतिक इसमें भी अनुभूति कर सकते हैं, पर भौतिक जगत में ये जो संबंध है ये थोड़ा आत्मेंद्रिय प्रीति का संबंध है, थोड़ा उसमें स्वार्थ भरा है, थोड़ा बहुत। पर जब कृष्ण के साथ जो संबंध है वो पूरी तरह से कृष्णेंद्रिय प्रीति का ही संबंध है, कंप्लीटली स्वार्थ लेश मात्र में भी उसमें स्वार्थ नहीं है, खुद का आनंद के बारे में सोचते ही नहीं, कृष्ण भी सोचते नहीं और भक्त भी सोचते नहीं। तो इसको सामग्री रसा बोलते हैं, सामग्री भाव, जो सब मिलके रस में परिवर्तन हो जाता है, जो एकदम रसीला और एकदम स्वादिष्ट है, जो वात्सल्य रस के फॉर्म में हो या माधुर्य रस के फॉर्म में या सख्य रस के फॉर्म में या दास्य रस के फॉर्म में या शांत रस के फॉर्म में। तो ये जो रस है इसमें पांच मुख्य रस है और सात गौण रस है। जो पांच जो मुख्य रस है वो है शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ये तो पता है आपको। शांत रस मतलब जैसे एक क्रिकेट फैन को सचिन तेंदुलकर के प्रति क्या होगा, अगर कोई रोड में वॉक कर रहा है, क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है और उसके आमने सामने से सचिन तेंदुलकर आ जाए, आप लोगों को सचिन तेंदुलकर पता है हाँ। तो आमने से सचिन तेंदुलकर आ गए तो उनको कैसा लगेगा, एकदम आश्चर्यचकित लगेगा और हाँ ऐसा वो शांत रस है। अगर किसी को कृष्ण के प्रति एकदम बहुत ऐश्वर्य भाव है पर वो सेवा करने में परिवर्तित नहीं हुआ, एकदम एक्टिव सेवा करने में, वो शांत रस होता है। जैसे वृंदावन में 3-4 साल का बच्चों को कृष्ण के प्रति एकदम कृष्ण को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे, पर क्या बच्चे लोग हैं, एकदम पर्सनल सर्विस करने का सेवा करने का भी उतना उनका ये नहीं है, तो वो शांत रस में रहते हैं। और कुछ लोग हैं वृंदावन में रक्तक पत्रक इत्यादि जो कृष्ण का एकदम उनका पैर मसाज करना, उनको फैन करना, उनके लिए तांबूल रेडी करना, वो सब वो करते थे, उनका दास्य रस होता है। और श्रीदामा सुबल मधुमंगल ये लोगों को उनके प्रति सख्य रस फ्रेंडशिप, और नंद महाराज यशोदा मैया ये सब को रोहिणी देवी नंद उपनंद सुनंद ये सबको वात्सल्य रस, और गोपियों को माधुर्य रस। तो ये जो पांच प्रकार का मुख्य रस है इसका वर्णन उन्होंने पश्चिम दिशा में वर्णन किया, तीसरा है ये। मैंने बोला कि तीसरा इसमें पांच लहर है, और उत्तर दिशा में सात प्रकार का गौण रस है, जैसे हास्य रस, करुणा रस, बिभत्स रस, भयानक रस, और वैसे इत्यादि सात गौण रस है, उसका वर्णन दिया हुआ है। और ये जो रस है इसमें कुछ कुछ रस है जो मिल सकता है अच्छा सा, जैसे सख्य रस और हास्य रस मिल सकता है, और वात्सल्य रस और करुणा रस जब कृष्ण और बलराम जी मथुरा में कंस का महल में गए और चाणूर और मुष्टिक के साथ उनका मल्लयुद्ध होने वाला था, ये तो हमने आपने पढ़ा होगा, तो जब ये मल्लयुद्ध होने वाला था तो ये चाणूर और मुष्टिका और कूट शल तोशल ये सब एकदम एक हट्टे कट्टे और एक हिल के मतलब एक पर्वत जैसे थे, और कृष्ण और बलराम एकदम दुबले पतले एकदम छोटे छोटे दिख रहे थे उनके सामने। तो उसको देख के यशोदा माता, नंद महाराज और बाकी जो वरिष्ठ गोप गोपियों थे उनको उसको देख के बहुत करुणा, अरे क्या करने वाले हैं कृष्ण बलराम, ऐसा करुणा भाव प्रकट हो गया। वात्सल्य तो है ही, पर वो जो करुणा भाव भी है वो एकदम मिलता है वात्सल्य से, अच्छा सा जम जाता है। तो वैसे जमने वाला रस क्या क्या है और ना जमने वाला रस क्या क्या है उसको रसाबास बोलते हैं, है? तो ऐसा सात गौण रस और मिलने वाला रस और रसाबास, ये मिलके नौ हो गया। अभी आप लोग कितने अच्छे सुने देखते हैं। तो अभी विभाव, मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आप मुझे पूछ लिया, फिर भी मैं आपको पूछूंगा, ठीक है। विभाव, विभाव एक ब्रॉड कैटेगरी है। विभाव के अंदर दो प्रकार है, एक है आलंबन एक है उद्दीपन। आलंबन में है जो भक्त और भगवान आलंबन है, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन, और भगवान का संबंधित जो वस्तु है वो उद्दीपन। ये जो विषय आलंबन और आश्रय आलंबन और उद्दीपन ये तीनों मिलके इसको विभाव बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप बताइए कि ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का सागर है इसमें कितना पार्ट है, चार। ये चार क्या क्या है, उत्तर नहीं पूर्व, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर। तभी आप हाथ उठा के आंसर कीजिए, पूर्व पक्ष में, ब्रह्मचारी लोग आंसर नहीं कर सकते, पूर्व पक्ष में कितना लहर है,
पांच।
गलत,
चार।
चार क्या क्या है, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और दक्षिण विभाग में कितना लहर है, क्या क्या है, पांच। क्या क्या है पांच, कोई बोल सकते हैं, कोई प्रयास कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अनुभव और सात्विक भाव, ये पांच। इसको क्या बोलते हैं, सामग्री भाव बोलते हैं, है ना, सामग्री है। ये सब मिलके रस बन जाता है, जैसे आम रस बनाते हैं, पोंगल बनाते हैं, ऐसा पोंगल का सामग्री है ये सब, ठीक है। और पश्चिम दिशा में कितना लहर है,
पांच।
पांच, क्या क्या है पांच? ये पांच मुख्य रस है, वो पश्चिम दिशा में है, और उत्तर दिशा में कितना लहर है? नौ, सात प्लस दो, लहर नौ है और गौण रस सात है, और सात गौण रस और बाकी दो क्या है? जो मिलता है वो रस क्या है, और जो ना मिलता है वो रसाबास। ये सब मिलके ये जो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का कंटेंट्स इतना ही है। उत्तर का इसका एग्जैक्टली मुझे हिंदी में आता नहीं, मुझे हास्य रस है पहला, अद्भुत रस है दूसरा, अस्टानिशमेंट, शिवलरी है वीर्य रस, जैसे भीष्म देव को कृष्ण के प्रति वो, और चौथा कंपैशन है करुणा रस, और पांचवा एंगर है रौद्र रस, और छठा फिगर है विपत्स रस, एंड सेवेंथ गास्टलीनेस है भयानक रस। लाफ्टर जो है, जो मधुमंगल और कृष्णा साथ में आएंगे तो हंसी मजाक जो चलता है वो हास्य रस है। अस्टानिशमेंट मतलब जो विश्वरूप को देख के अर्जुन को जो हुआ, वो एक्चुअली बिभत्स है, भयानक बिभत्स है वो। भयानक जो रस है वो कंस को कृष्ण के प्रति हुआ, वो भयानक रस है। और जो फियर है और जो वो ये है, उनका नाम क्या है, जो चाणूर और मुष्टिक जब इनको देखे, मल्लाना मशनीर, वो वीर्य रस है। और जो असताम क्षितिभुजाम शास्ता, ये जो कंस शिशुपाल इत्यादि जो दुष्ट राजाओं थे, उनको कृष्ण के प्रति एकदम थोड़ा भय रहता था वैसा। तो अलग अलग, तो ये है एक ग्रंथ का विभाग। तो अभी हम इसमें खाली जो पहला पूर्व दिशा है उसका ही हम देखेंगे, क्योंकि वो भक्ति शास्त्री में उतना ही है। तो उसमें पहला जो वेव है वो है सामान्य भक्ति, भक्ति क्या है और उसका इम्पोर्टेंस, मतलब उसका स्पेशलिटी क्या है, और साधना भक्ति क्या है, और साधना के अंदर हमारा है वैदी साधना है और रागानुग साधना है, यह क्या है, और तीसरा लहर में है भाव भक्ति क्या है, और चौथा लहर में प्रेम भक्ति क्या है। तो इसमें हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि ये जो पूर्व दिशा का पहला लहर है जो सामान्य भक्ति के बारे में बता रहा है, उसमें क्या क्या है। तो पहले रूप गोस्वामी मंगलाचरण से शुरू करते हैं। मंगल आचरण मतलब इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस। तो ये जो मंगलाचरण है इसमें तीन भाग है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, से मंगल चरण है या त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। तो ये मंगलाचरण का तीन भाग है, एक है वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। वस्तु निर्देश मतलब ये जो ग्रंथ है इसका मुख्य सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका वर्णन, वस्तु का निर्णय करना, वो है वस्तु निर्देश। और आशीर्वाद, आशीर्वाद मतलब ये जो बुक का जो पढ़ने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करने वाले हैं, जिसको आस्वादन करने वाले हैं, उनका उनको ये जा रूप गोस्वामी का आशीर्वाद क्या है। और नमस्कार, गुरु वैष्णव भगवान तीनेरा स्मरण, गुरु का वंदना, वैष्णवों का वंदना और भगवान का वंदना। तो यह है मंगलाचरण। इसमें क्या क्या बोलते हैं उसके अंदर जाने का समय नहीं है हमारे पास। और इसके बाद वो ग्रंथ विभाग जैसे जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं उसके बारे में बताते हैं। रूप गोस्वामी खुद बताते हैं कि मैंने एक ग्रंथ को कैसा विभाजित किया है, तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है जो उत्तम भक्ति, ये जो ग्रंथ है भक्ति में अलग प्रकार का है, जैसे पर वैसे तो भक्ति एक प्रकार का ही है। जैसे हम पानी बोलते हैं तो हमको समझना चाहिए कि पानी लेके आओ, मतलब शुद्ध जल, पर कभी कभी वो कुछ गंदगी से मिश्रित हो जाता है तो गटर का पानी हो जाता है, या कभी कभी उसमें हम जानबूझ के कुछ मिलावट कर देते हैं, कुछ रसना डाल देते हैं या कुछ ऑरेंज स्क्वैश डाल देते हैं, जो भी है। पर अगर हम पानी बोलेंगे तो बिना मिलावट का शुद्ध पानी है, वही हमारा समझ है कि नहीं। तो ये भक्ति मतलब उत्तम भक्ति है, और क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो भक्ति रस के बारे में जो लिखने का उद्देश्य था रूप गोस्वामी का, भक्ति रस का वर्णन करने का उद्देश्य था उनको, तो इसलिए उन्होंने खाली उत्तम भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा, क्योंकि शुद्ध भक्ति के द्वारा से ही भक्ति रस का आस्वादन कर पाएंगे। बाकी जो मिश्र भक्ति है, मिश्र भक्ति मतलब कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, ऐसा जो कर्म ज्ञान योग इत्यादि से मिश्रित जो भक्ति है उससे भक्ति रस का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। मुक्ति का प्राप्ति हो सकता है, स्वर्ग का प्राप्ति हो सकता है, भुक्ति सिद्धि इत्यादियों का प्राप्ति हो सकता है, पर अगर आपको प्रेम रस का आस्वादन करना है वो खाली शुद्ध भक्ति से ही होगा। इसलिए मिश्र भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी कुछ भी भक्ति रसामृत सिंधु में एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि उनका उद्देश्य था भक्ति रस का रचना करने का, भक्ति रस के बारे में एक्सप्लेन करने का उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने मिश्र भक्ति के बारे में एक शब्द भी लिखते नहीं। सीधा शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन को क्या बोल गया, व्याख्या क्या है, तो ये तो आपको पता है शुद्ध भक्ति का जो व्याख्या, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि क्या हम ये उत्तम भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। हम जो रोज का जो भक्ति हमारा चल रहा है वो उत्तम भक्ति है कि मिश्र भक्ति है, क्या कर रहे हैं हम, इसका हम एक 7-8 घंटा चर्चा किया हम कल, पर आज तो उतना टाइम नहीं है, पर एक 5 मिनट तो चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है इसका कुछ तो स्पष्टता चाहिए इधर। क्या हम मिश्र भक्ति कर रहे हैं या शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्त है क्या या नहीं है, क्या ये तो थोड़ा समझना चाहिए। तो उसके लिए पहले ये जो व्याख्या है इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो रूप गोस्वामी क्या बोलना चाहते हैं, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ये जो उत्तम भक्ति है ये क्या है, अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब है कुछ सेवा। अगर वो सेवा हमारा इंद्रियों के द्वारा भी हो, जैसे आज सुबह हमारा कुछ भक्त लोग पोंगल बना रहे थे और वड़ा बना रहे थे, और कल हमारा प्रभु जी इतना प्रयास करके इतना सुंदर सुंदर माला बनाया प्रभु जी, स्मित कृष्ण प्रभु, तो वो अनुशीलनम है, जैसे हमारा इंद्रियों के द्वारा। पर बैठ के भगवान का लीलाओं के बारे में स्मरण करना वो भी एक प्रकार का अनुशीलनम ही है, उधर इंद्रियों का प्रयोग नहीं है पर मन का प्रयोग है, पर मन भी एक इंद्रिय ही है। मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ऐसा छठा इंद्रिय बोलते हैं भगवान, मन को भगवत गीता में। तो इंद्रियों के द्वारा कुछ सेवा करना या मन के द्वारा स्मरण करना वो भी शीलनम है, अनुशीलनम। और ये अनुशीलनम किसके प्रति होना चाहिए? कृष्ण के प्रति, कृष्ण अनुशीलनम। और वो भी अनुकूल भावना से होना चाहिए, मतलब कृष्ण प्रसन्न हो जाए ऐसे अनुकूल भावना से होना चाहिए। जो उत्तम भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, हमारे इंद्रिय या मन के द्वारा कृष्ण के प्रति कुछ सेवा करना और अनुकूल भावना से करना, ये भक्ति है। ये भक्ति को, ये भक्ति उत्तम कब होता है? तब वो भक्ति में दो और गुण हो तो वो उत्तम भक्ति हो जाता है। वो दो गुण क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब है वो जब भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति के द्वारा भगवान का प्रसन्नता को छोड़ के और कुछ भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति का नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा का नहीं, और जो भी भौतिक इच्छाएं हो वो भक्ति के द्वारा उसको पाने का इच्छा नहीं होना चाहिए। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब है कि ये जो भक्ति है, भक्ति का क्रिया है, उसमें ज्ञान का हो या अष्टांग योगा का हो या कर्म का हो, उसका मिलावट नहीं होना चाहिए। तो भक्ति का अंग मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। जो ये नौ को 64 में और विभाजित किया है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसम संध में, वो भी आगे देखेंगे हम। तो उत्तम भक्ति का ये मतलब है कि वो अनुकूल भावना से कृष्ण के प्रति कुछ सेवा करने का इच्छा होना चाहिए, सेवा करना भी चाहिए, और वो सेवा के द्वारा धन संपत्ति इत्यादि को पाने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। और वो जब हम भक्ति का क्रिया करते हैं उसमें ज्ञान कर्म इत्यादि का मिलावट नहीं होना चाहिए। तो यही है शुद्ध भक्ति का व्याख्या, उत्तम भक्ति का व्याख्या। तो अभी आप लोगों में से ये अनुशीलनम तो आप तो कर रहे ही होंगे कुछ तो सेवा, अभी श्रवण भी सेवा ही है, आप लोग इधर बैठे हैं तो श्रवण का सेवा तो हो ही रहा है, उसके पहले प्रसाद सेवा भी हुआ होगा वो भी सेवा ही है। और आपसे जितना हो सकता है उतना आपका इंद्रियों के द्वारा भी कुछ कुछ सेवा किए होंगे, तो अनुशीलनम तो है और वो भी कृष्ण के प्रति है और अनुकूल भावना भी है। पर अन्याभिलाषिता शून्यम है क्या? और कुछ भौतिक चीज के साथ प्रति आपका आसक्ति चला गया या अभी भी है? ये तो पूछने का बात है। तो अगर है भौतिक इच्छा तो वो मिश्र भक्ति हो गया, नहीं है तो शुद्ध भक्ति है। तो अगर आप ना बोलेंगे तो आगे जो भी भक्ति रसाम सिंधु में लिखा है वो आपके लिए नहीं है। अगर हां बोलेंगे तो आपको इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आप सब लोग ना बोल देंगे नहीं प्रभु जी हमको भौतिक इच्छा तो है ही, तो हम ये लेक्चर को इधर ही रोक देंगे, आगे भक्ति रसाम सिंधु का कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो वही अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा स्थिति भी कभी होता है कि ये भौतिक इच्छा नहीं होना चाहिए और कभी वो भौतिक इच्छा में लगे रहते हैं, जागृत हो जाता है, ये स्थिति क्या है? तो ये अभी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं क्या, या कुछ हमारा भक्ति में मिलावट है क्या, ये समझना पड़ेगा। तो इसका असेसमेंट ही करने वाले हैं अभी एक, ये मैं पूछूंगा वो सबको, आपका आंसर से सब इसका असेसमेंट हो जाएगा। ये जो इच्छा है, दो प्रकार का इच्छा है। एक जो इच्छा है जो हमारा वैल्यू सिस्टम या श्रद्धा के द्वारा जनित इच्छा, और दूसरा है जो हमारा कंडीशनिंग या स्वभाव से जनित इच्छा। इसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये जो श्रद्धा से जनित इच्छा है, श्रद्धा क्या बोलता है, ये सही है ये गलत है। जो अभी हमको क्या श्रद्धा मिला है, कृष्ण भावनामृत का श्रद्धा मिला है, भक्ति का श्रद्धा मिला है, तो सही क्या है, आनुकूल्यस्य संकल्पो प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। जो भक्ति भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको हम अपनाना चाहते हैं, और भक्ति करने के लिए जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो श्रद्धा है वो हमको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये जो स्वभाव है ये बताता है मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है। तो एक एग्जांपल बोलता हूं, टीवी में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, हमारा स्वभाव क्या बोलता है, अरे बहुत अच्छा लगता है, बैठ के देखना चाहिए, हाँ इंडिया जीतना चाहिए। पर हमारा श्रद्धा क्या बोलता है, ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, आपको करना नहीं चाहिए, है कि नहीं। और साधकों के लिए ये जो ये श्रद्धा और स्वभाव का बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष होता ही रहता है। पर दोनों प्रकार का इच्छा है हम में, इसमें जो श्रद्धा से जनित जो इच्छा है उसको बोलते हैं हम अभिलाषा, और स्वभाव से जनित इच्छा है इसको बोलते हैं अनर्था। अनर्था मतलब हमारा जो प्रयोजन का प्राप्ति करने से जो एक स्पीड ब्रेकर बन जाता है, जो एक क्या बोलते हैं रुकावट बन जाता है, उसको अनर्था बोलते हैं। जैसे सोचिए, आई वॉन्ट टू प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे मेरा गुरु को प्रसन्न करने का इच्छा है। आप लोगों में से कितने में ये इच्छा है, है? ये जो इच्छा है किधर से जनित है, श्रद्धा से जनित या स्वभाव से जनित? श्रद्धा से जनित इच्छा है। और कभी कभी लगता है कि कुछ भोग वस्तु है जो निषिद्ध है, एक वो निषिद्ध भोग वस्तु है, वो मद्यपान भी क्यों ना हो या कभी कांदा लहसुन भी क्यों ना हो, तो उसको कभी आस्वादन करने का कभी इच्छा रहता है, जो पता है हमको कि कृष्ण भावनामृत के लिए उचित नहीं है, पर फिर भी वो इच्छा पूरा छूटा नहीं। ऐसा कितना लोगों का है, कांदा लहसुन का नहीं रहेगा, मैं एक उदाहरण का रूप में दे रहा हूं, पर बाकी बहुत कुछ हो सकता है वो कैटेगरी में। हाँ नहीं, पकोड़ा तो कृष्ण भावनामृत के अंदर ही है। हाँ, स्वादिष्ट टेस्टी फूड भी भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वड़ा पाव जो भगवान का अर्पण नहीं हुआ, रोड साइड वड़ा पाव कोई है, पर एकदम सुगंध आ रहा है और एकदम मुंह से पानी बह रहा है, तो वो इच्छा भी है कि नहीं? पर वो किधर से जनित इच्छा है, स्वभाव से जनित इच्छा है। वैसे मुझे आध्यात्मिक प्रगति करना है, ये इच्छा किसमें कितने में है? और किधर से जनित है वो? श्रद्धा जनित। और कभी कभी किसी को मारपीट करने का इच्छा है, कोई बहुत आपको इरिटेट कर रहा है, ब्लड बॉइल करवा रहा है आपका, तो उसको कभी पीटने का भी इच्छा रहता है, वो किधर से जनित इच्छा है? स्वभाव से जनित इच्छा है। तो हमारा अभिलाषा अलग है, ये जो स्वभाव से जनित इच्छा है, आप में से तो क्लियरली आपको इसका मैं कुछ सिखाया नहीं आपको, आप अपने आप आपने बताया ये स्वभाव से जनित है, श्रद्धा से जनित है। ये जो श्रद्धा से जनित जो इच्छा है इसको अभिलाषा बोलते हैं। तो ये जो और जो स्वभाव से जनित प्रतिकूल इच्छाएं हैं उसको हम अनर्थ बोलते हैं, है कि नहीं? ये जो काम क्रोध इत्यादि, ये आपको अभिलाषा बोलेंगे, आप अनर्थ ही बोलेंगे ना? हा? तो पर ये अनर्थ है, पर हमारे अंदर तो है ही, उसका तो हम ना नहीं बोल सकते अभी। तो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, ये जो शुद्ध भक्ति है ये अन्य अभिलाषिता शून्यम है, अन्य अभिलाषाओं से वर्जित होना चाहिए, पर अन्य अनर्था शून्यम नहीं बोलते हैं, है कि नहीं? तो क्रिकेट मैच देखने का इच्छा है, अगर किसी को क्रिकेट मैच देखने का इच्छा है वो शुद्ध भक्ति कर सकता है क्या? कर सकता है कि नहीं?
नहीं।
तो अगर वो क्रिकेट मैच देखने का इच्छा को वो अनर्थ के रूप में देख रहा है, अरे एक अनर्था है पर मेरे से छूट नहीं रहे, हे भगवान ये अनर्था को थोड़ा निकाल दो ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा, अगर वो अनर्थाओं का रूप में उसको देख रहा है तो वो फिर भी अन्याभिलाषिता शून्यम है। अगर वो सोच रहा है कि अरे क्या बिगड़ता है, भगवान का भक्ति तो कर रहा हूं ना, सुबह तो 2 घंटा माला किया, अभी 2 घंटा क्रिकेट मैच देखूंगा तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी इच्छा है वो भी इच्छा है, तो वो क्रिकेट मैच देखना उसका अभिलाषा का रूप में है, अनर्था के रूप में नहीं है, तो वो उत्तम भक्ति नहीं है, समझे कि नहीं? तो अगर वो जो इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयास भी कर रहे होंगे, पर जैसे ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लिया मैंने, अभी एक गृहस्थ जीवन में धन अर्जन करने का इच्छा रहता है, मतलब ताकि फैमिली को एक बेसिक फैसिलिटीज दें, और बच्चों को थोड़ा अच्छा एजुकेशन दें, पढ़ाई करवाएं, वो सब। पर जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अगर हमारा प्रार्थना ये है कि भगवान आपको मैं इतना भक्ति किया है तो मुझे अच्छा सा पगार मिलना चाहिए और अच्छा सा ये सब देखभाल होना चाहिए, तो वैसा पूछेंगे तो मिश्र भक्ति हो जाएगा। पर अगर हम भगवान को ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए भगवान हम सबको पूरा परिवार के साथ आपका भक्ति ही करना है, तो उसको करने के लिए जो भी जो चाहिए सुविधा उतना दे दीजिए हमको, नहीं तो वो सुविधा के बारे में हमको सोच के कृष्ण भावना कृष्ण के बारे में सोच नहीं पाएंगे, सुविधा के बारे में ही सोचते रहेंगे। थोड़ा बेसिक मिनिमम जो सुविधा चाहिए उसको कम से कम टाइम पे वो उसके लिए मैं धन अर्जन कर देता हूँ, बाकी टाइम आपका सेवा में लगाता हूँ, वैसा प्रार्थना करेंगे तो धन अर्जन का ही हमारा इच्छा है पर वो अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा क्या है? भक्ति करने का अभिलाषा है। तो अगर थोड़ा बहुत अनर्थ के रूप में काम क्रोध इत्यादि है तो भी हमको निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति करने से ही वो अनर्थ का निवृत्ति होगा, है कि नहीं? तो अनर्थ निवृत्ति कैसे होगा? भक्ति करने से ही होगा ना। तो तो वो जो अनर्थ निवृत्ति है, तो इसलिए थोड़ा अनर्थ का रूप में कुछ भौतिक इच्छा है तो किसी को निराश होने का जरूरत नहीं है, तो जम के भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, तब वैसे उनका अनर्थ छूट जाएगा। अगर वो भौतिक इच्छाओं को अनर्थ का रूप में ही नहीं देख रहा है, अभिलाषा का रूप में देख रहा है, तो वो उत्तम भक्ति नहीं है और भक्ति रसामृत छंद उसके लिए नहीं है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। माइक पास करेंगे।
कभी ऐसा भी होता है कि जो स्वभाव होता है और उससे जो अनर्थ आप बोल रहे हो, अन्य मतलब वो जो भगवान के प्रतिकूल है उससे दूर लेके जाने वाला है, वो बहुत सारे हम लोग देखते ही रहते हैं।
हाँ।
लेकिन ऐसा भी स्वभाव हो सकता है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कई आचार्य में कहते हैं कि बचपन से वो स्पिरिचुअल मास्टर को प्लीज करना चाहते हैं, या आई वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, जैसे होता ही है, उसमें स्वाभाविक रूप से ही होता है,
वो स्वाभाविक रूप से हमको दिखता है, पर ये जो श्रद्धा है वो पूर्व जन्म से भी वो उनको वो कैरी कर रहे होंगे शायद, है ना,
वो अभिलाषा बन जाता है।
तो कभी वो अनर्थ नहीं, जो भी स्वभाव से जनित है अगर वो भक्ति से अनुकूल है, हमारा श्रद्धा के अनुकूल है, उसको अनर्थ नहीं बोलते हैं। जो प्रतिकूल इच्छा है, भक्ति के प्रतिकूल इच्छा है और स्वभाव से जनित है, उसको अनर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूछ रहा हूं, ये जो अभी अभिलाषा और अनर्थ का परिभाषा समझ लिए आप, व्याख्या समझ लिए, तो अभी आप बताइए आप में से कितने लोग को लग रहा है कि आपका जो क्रिया है, आपका जो साधना है वो उत्तम भक्ति है बोल के कितना लोगों को लग रहा है? नहीं लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है?
अनर्थ इतने बड़े बड़े
है। मैं अभी इसका डेफिनेशन क्या बोला, अन्य अनर्था शून्यम बोला क्या?
वो इच्छा है,
इच्छा है, वही बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अगर भक्ति कर, उत्तम भक्ति करने के लिए अनर्थाओं से रहित होने का एक प्री रिक्विजिट है, अगर वो एक पात्रता का जरूरत है, तो भक्ति का उसमें भक्ति का क्या रोल है? आपका अनर्थों को निवृत्ति करने में भक्ति का क्या रोल है उसमें? अगर भक्ति करने के लिए सब अनर्थों से आपको रहित होना चाहिए, तो भक्ति का महानता क्या है उसमें? भक्ति करने से अनर्थ निवृत्ति होता है, पर आपका उत्तरदायित्व क्या है? अन्य अभिलाषा नहीं रखना चाहिए, है ना? तो अन्य इच्छाओं के साथ भक्ति कर सकते हैं, वो फिर भी उत्तम भक्ति हो सकता है, पर अन्य इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भक्ति करना नहीं चाहिए, फिर वो मिश्र भक्ति हो जाता है। समझा है ना? ये दोनों का अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? अन्य इच्छाओं के साथ भक्ति करना और अन्य इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भक्ति करना, है ना? कभी आप जाके भगवान के सामने प्रे करते हैं क्या? हे भगवान आज इंडिया को जिता दो, हाँ? आज क्रिकेट मैच देखने का टाइम पावर कट नहीं होना चाहिए, हे भगवान प्लीज, ऐसे वैसा तो आप प्रार्थना नहीं करते हैं ना भगवान को, वो तो फिर वो मिश्र प्रार्थना हो गया। अभी क्रिकेट मैच देख ही लिया, हाँ। अभी आप भगवान को जाके प्रार्थना करेंगे, अरे टीवी देखना देखने का मेरा जो ये जो वीकनेस है इसको कभी तो हटा दो भगवान, वैसा प्रे कर। टीवी देखने का इच्छा अभी भी है, पर हमारा प्रार्थना क्या है? समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब वो जो इच्छा है उसको आप अनर्थ का रूप में देख रहे हैं, तो वो आपका अभिलाषा नहीं है। जब वो इच्छा है उसको आप अनर्थ का रूप में नहीं देख रहे और उसको पूर्ति करने के लिए भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हैं तो आपका अभिलाषा हो गया। काम क्रोध इत्यादि इसको पूर्ति करने के लिए आप भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं क्या, या उसको निकालने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं? तो निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो तो अभी अनर्थ हो गया ना, अभिलाषा नहीं है, है कि नहीं, समझे कि नहीं? तो भक्ति, रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इधर, भक्ति उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम है, अन्य अभिलाषाओं से रहित है, अन्य अनर्थाओं से रहित नहीं है। ताकि आप ये उत्तम भक्ति का को करने से अन्य अनर्थों से आपका निवृत्ति हो जाता है, उसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं।
जल्दी उनको उस जो स्थिति में उसे उभर कर आए, हाँ, उसके लिए क्या बताएंगे? वो भौतिक इच्छा ही हुआ ना?
वो भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो भौतिक इच्छा तब है तब आप वो संबंध को एक भौतिक स्तर से देख रहे हैं। तो नहीं, एक इसको मैं आंसर कर लेता हूं। अगर वो जो संबंध है उसको एक भौतिक स्तर से आप देख रहे हैं तो वो भौतिक इच्छा हो गया। अगर उसको आप एक वैष्णव के स्तर पे देख रहे हैं, एक वैष्णव का दुख को निकालने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो भौतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि वैष्णव है भगवान के प्रिय है, और भगवान का जो प्रिय है उनके लिए आप, उनका शुभकामनाएं के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो इच्छा आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं है।
जैसा कि कोई यहाँ पे सेवा करते हैं या वो तन से हो, मन से हो या धन से, तो हम यहाँ पे करते हैं कि भगवान इनको बहुत सारा अभी
धन दें, भगवान का सेवा के लिए है ना, तो अच्छा ही है, भगवान का सेवा के लिए ही ना। इनको, उनको देख रहे हैं कि जो भी उनका धन आता है उसका 50% भगवान को दे देते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं हे भगवान उनको ज्यादा धन दे ताकि भगवान का सेवा और अच्छी तरह से हो जाए। अच्छा ही है। तो आपका इंटेंशन क्या है इसमें, आपका हेतु क्या है? वो जो ताकि आपको भी कुछ कमीशन मिल जाए वो आपका हेतु है, या भगवान का अच्छा सेवा हो जाए वो हेतु है? तो अगर भगवान का सेवा हो जाए वो हेतु है तो सही है, वो आध्यात्मिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं है वो। हाँ, तो अभी आप बताइए, आप लोगों में से जो भक्ति कर रहे हैं अभी अच्छा रूप से, सोला माला इत्यादि, आप लोगों में से कितने लोगों को लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं कि वो उत्तम भक्ति है बोल के?
मार्ग उत्तम है।
हाँ,
मार्ग उत्तम है, पक्का है।
तो क्या उत्तम नहीं है?
हमारा इच्छा, हमारा
मैं वही बोल रहा हूं, अभी बाद में बताएंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, रूप गोस्वामी बताएंगे ये जो उत्तम भक्ति करने से क्या होता है। वो बोलते हैं क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। छह प्रकार का बेनिफिट है भक्ति करने से, उत्तम भक्ति करने से। उसमें पहला बेनिफिट क्या है? क्लेशाग्नि है। क्लेश मतलब क्या है? अनर्था। अनर्थों का निवृत्ति जो होता है उसको क्लेशाग्नि बोलते हैं। पर यह अनर्थ निवृत्ति कैसे होता है? उत्तम भक्ति करने से होता है ना? तो उत्तम भक्ति करने का टाइम अगर आपका अनर्थ के रूप में कुछ भौतिक इच्छा है आपका हार्ट में, तो वो वो फिर भी वो उत्तम भक्ति ही है। वो भाव भक्ति या प्रेम भक्ति नहीं है, क्योंकि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का स्तर पे स्वभाव से पूर्ण तरह से अनर्था भी चला जाता है, पर साधना भक्ति का स्तर पे अनर्थ रह जाता है पर अन्य अभिलाषा नहीं रहता है। जैसे मैं बोला अन्य अभिलाषा है तो आपका जो भक्ति है भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं। अगर भौतिक इच्छाओं के साथ आप भक्ति कर रहे हैं पर उसको पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी अन्याभिलाषिता शून्यम है। अभिलाषा वो है जिसको पूर्ति करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, पर अनर्थ वो है जिसको आपका हार्ट से निकालने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। समझे ना? तो कितने लोगों को इधर अन्य अभिलाषा है?
हमने जो टीवी का एग्जांपल दिया तो उनको पता है अनर्थ है और वो हेल्पलेस भी है जो बिना देखकर नहीं रह सकता, तो ऐसे ही प्रार्थना से वो चले जाएगा या स्ट्रगल प्रयास करना चाहिए कि हमें गलत है इसे अपने तरफ भी प्रयास करना चाहिए?
तो अपने तरफ से जरूर प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण इधर भी दिया है मैंने, जो एक भक्त थे, भक्त नहीं थे पहले, वो चेन स्मोकर थे। चेन स्मोकर मतलब ऐसा चेन स्मोकर थे कि दूसरा सिगरेट को पहला सिगरेट बुझने से पहले उससे ही वो जला देते थे ताकि एक मिनट भी वेस्ट नहीं हो जाए, उनका संग यू नो छूट न जाए एक सेकंड भी, तो वैसे वो स्मोकिंग करते थे। तो एक भक्त उनका संपर्क में आए और उनको बताए, थोड़ा समझाए, उनको ये भक्ति के प्रति एक आकर्षण हो गया, फिर उसके द्वारा भक्ति मार्ग से भी आकर्षण हो गया। पर उनको पता था कि ये सिगरेट तो पीना नहीं चाहिए, तो मंदिर आने भी शुरू कर दिए। तो क्या करते थे? मंगल आरती आते थे, संसार दावा खत्म होते होते भाग जाते थे बाहर, एक सिगरेट पी के फिर तुलसी आरती तक पहुंच जाते थे। फिर तुलसी आरती होने के बाद शिक्षाष्टकम के बाद भाग जाते थे, एक सिगरेट पी के आ जाते थे, फिर जपा में चार माला कर लेते थे, चार माला के बाद भाग जाते थे, ऐसे करते करते 16 माला करते थे। तो जिन्होंने इनको प्रीचिंग किया उनको पता था इनका क्या प्रॉब्लम था, वीकनेस था, पर बाकी भक्त लोग सोचते थे ये 15-15 मिनट में किधर भाग जाता है। तो एक दो जन ने उसको फॉलो करके पीछे पीछे गए, तो गेट के मंदिर का गेट के बाहर जाते थे और सिगरेट पीते थे। तो एक जन ने थोड़ा पास जाके देखा तो सिगरेट पी रहे थे और आंख से आंसू बह रहा था, क्योंकि उनको उनको एक गलत है पता था पर ये आदत छूट नहीं रहा था उनसे, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो रो रो के पी रहे थे वो, क्योंकि जिनको वो वीकनेस था तो वो समझ सकता है कि वो निकोटीन का वो एडिक्शन है कितना स्ट्रांग होता है, जल्दी से छूट नहीं जाता है। पर भक्तों का प्रेरणा से, भक्ति का बल से, खुद का प्रयास से थोड़ा थोड़ा करके वो पूरा छूट गया, उसके बाद उनका दीक्षा भी हो गया, तो अभी वो अच्छा तरफ से पूरा परिवार के साथ वो भक्ति कर रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो भक्तों का भी प्रेरणा चाहिए, उसमें खुद से भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? टीवी देखने का इच्छा है, स्पेशली जब क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच शुरू होने का आधा घंटा पहले ही आके धारवाड़ सेंटर में बैठ जाना चाहिए और कुछ सेवा में लग जाना चाहिए या कुछ उत्तरदायित्व ले लो ताकि सदायोगी प्रभु पूछेंगे हाँ हो गया कि नहीं सेवा। तो 3 घंटा का अच्छा से एक सेवा ले लेना चाहिए और पूरा ये मंदिर को साफ करूंगा और ये या वो रैक्स को पूरा एकदम अच्छा सा अरेंज करता हूँ, प्रभु जी आज का कुकिंग मैं करता हूँ। 2 दिन पहले ही कमिटमेंट दे देना चाहिए, प्रभु जी उस दिन आप कुछ कुकिंग मत कीजिए, मैं ही आऊंगा और खाली कुकिंग नहीं, कुकिंग करके पूरा किचन को साफ करूंगा, बर्तन को साफ करूंगा और डब्बाओं का सब लेके सब साफ करके रात को 10 बजे ही जाऊंगा, तब तक आप इधर से मैं निकलूंगा नहीं, और हो सकता है तो मेरा बेडिंग भी लेके आ जाता हूं, इधर ही सो जाता हूं। तो वहीं से कुछ तो क्या है, क्रिकेट मैच का 2-3 दिन पहले तक हम सोचेंगे कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, मुझे देखना नहीं चाहिए, पर जितना जितना पास आता है उतना वो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, 3 दिन पहले जब स्ट्रेंथ है तभी आके मंदिर में कुछ कमिटमेंट दे देना चाहिए, ये 4 घंटा मैं इधर सेवा करूंगा बोल के। तो क्या होता है, उस दिन जब आएगा तो सोचेंगे अरे प्रभु जी को तो कमिटमेंट दिया है मैंने तो आना ही पड़ेगा, तो आके सेवा में लग गए। थोड़ा बहुत सेवा का टाइम पे लगेगा, अरे इंडिया बैटिंग कर रहा है कि बॉलिंग कर रहा है, कितना विकेट गिरा होगा, तो ऐसे कर करके पर सेवा में लग लग के फिर हो गया। तो ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करेंगे तो आदत छूट जाएगा। जैसे प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि आप ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो ये जो विग्रह है इसको आप बनाओ। पहले मतलब एकदम नए थे श्याम सुंदर प्रभु, तो क्या करते थे, वो भी सिगरेट पीते थे, तो जगन्नाथ जी का विग्रह कर रहे थे तो जगन्नाथ जी का सर के ऊपर सिगरेट पैकेट को रख के फूंक रहे थे वो ऐसे। तो प्रभुपाद आए, उनका जो केन था उसे वो उसको पैकेट को हटाया और बोले कि देखो आपको और भगवान के बीच में ये सिगरेट को क्यों लेके आ रहे हैं। तो बोले कि मुझे पता है कि ये छूटना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ा प्रयास करो, देखो आज आप 1 पैकेट पी रहे हो 10 सिगरेट एक दिन में, अगला हफ्ता उसको 8 करो, अगला हफ्ता उसको 6 करो, फिर 5 करो, फिर 4 करो, ऐसे कर करके छूट जाएगा। तो श्याम सुंदर प्रभु जब ये सुने पहुंचे, अरे ये तो गलत है पर फिर भी कितना एक सोच समझ के एक करुणा भाव से एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रभुपाद। ये सोच सोच के उसी दिन उनका पूरा सिगरेट का आदत ही छूट गया। जब वो प्रभुपाद जी का वो करुणा का संपर्क में जब वो आए तो इतना पावरफुल था वो करुणा कि 1 मिनट में वो आदत ही छूट गया उनका, उसके बाद वो सिगरेट पिए ही नहीं। तो हमारा प्रयास इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है, प्रयास भी इंपॉर्टेंट है, मेनली भक्तों का संग इंपॉर्टेंट है। और जिधर हमारा वीकनेस है उसके लिए हमको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक क्रिकेट मैच का एक एग्जाम्पल दिया, तो आपको तो पता है सब स्केड्यूल कब क्या मैच है, तो 3 दिन पहले ही आके कमिटमेंट दे देने का तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। जब भक्तों के संग में रहेंगे तो कुछ छुएगा नहीं हमको, अकेले चले जाएंगे। अभी भक्तों के साथ बैठ के तो किसी को क्रिकेट मैच देखने का साहस तो नहीं रहेगा, नहीं तो उस दिन घर पे सत्संग प्रोग्राम अरेंज कर देने का, बस हो गया। तो हो सकता है आपको साहस है किसी में बैठ के भक्तों के सामने क्रिकेट मैच देखने का? जब अकेले है वो सब होता है, तब भक्तों का संग में है तो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? भक्तों का संग में रहने का प्रयास करना है, स्पेशली जब हमारा वीक पीरियड्स है वो टाइम हमको भक्तों के साथ ही बिताना चाहिए, तो अपने आप छूट जाएगा वो आदत। वैसा तो उत्तम भक्ति है जो आपको समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उत्तम भक्ति ही है, और वो उत्तम भक्ति करने से ही अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ निवृत्ति होगा उसके बाद क्या होगा? शुभदा, दूसरा बेनिफिट है। शुभदा का मतलब क्या है? सब कल्याण, सब मंगलता प्राप्त हो जाएगा भक्ति करने से। तो मंगलता का मतलब क्या है? स्वरूप गोस्वामी बोलते हैं कि चार है। बोलते हैं कि जगत प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्ता सद्गुणादि प्रदत्वम सुख प्रदत्वम, ऐसे चार प्रकार का बताते हैं। जगत प्रीणनम मतलब ये जो पूरा जगत है आपका दिव्य गुणों को देख के आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और सर्व जगताम अनुरक्ता का मतलब क्या है? आपको ये पूरा जगत में एक एक पशु पक्षी है उनके प्रति करुणा भाव आ जाएगा आपको, और सद्गुणादि प्रदत्वम बाकी बहुत सारा सब सद्गुणों है उससे सुसज्जित हो जाएंगे आप, और सुख प्रदत्वम। सुख प्रदत्वम का मतलब है दिव्य सुख का अनुभूति हो जाएगा आपको भक्ति करने से। तो ये सब भक्ति करने का बेनिफिट्स है, दूसरा बेनिफिट है ये शुभदा। तीसरा बेनिफिट क्या है? मोक्ष लघुताकृत। जब ये भक्ति करते करते आप भाव का स्तर पे पहुंच जाएंगे, तो वो स्तर पे अगर कोई बोले आप भक्ति छोड़ दो मैं आपको मुक्ति देता हूं, तो आप बोलेंगे मुक्ति साइड हो जाओ, ऐसे बोल देंगे। हमको उसमें थोड़ा भी रुचि नहीं रहेगा, क्योंकि वो भाव का स्तर पे वो जो आनंद का जो अनुभूति होता है वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो मुक्ति का जो जो आनंद है वो एकदम तुच्छ हो जाता है। और सुदुर्लभा, सुदुर्लभा मतलब वो आनंद इतना बेहतर है कि बहुत रेयर है, आम आदमी को मिलने वाला आनंद नहीं है वो। और पांचवा है सांद्रानंद विशेषात्मा। जब वो भक्ति प्रेम का स्तर पे पहुंच जाता है तो एकदम प्रगाढ़ आनंद का एक मूर्तिमंत स्वरूप हो जाता है, और श्री कृष्ण आकर्षणी, और वो स्तर पे भगवान कृष्ण भी आपके प्रति आकर्षित हो जाएंगे, आपको देखने के लिए आएंगे, आपसे वार्तालाप करने का इच्छा रखेंगे, आपको छोटा मोटा कुछ सेवा करने के लिए इच्छा रखेंगे, प्रयास करेंगे, आपको प्रसन्न करने के लिए वो प्रयास करेंगे, वो है श्री कृष्ण आकर्षणी। ये सब भक्ति करने से हमको मिल जाता है। तो ऐसे ये जो पूर्व विभाग का पहला लहर है वो शुद्ध भक्ति का व्याख्या, अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका व्याख्या करके उसके बाद वो शुद्ध भक्ति करने से छह प्रकार का जो बेनिफिट्स जो मिलता है वो क्या है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देके ये जो पहला लहर को खत्म कर देते हैं रूप गोस्वामी। अभी हम ये भक्ति रसामृत सिंधु का दूसरा लहर में जाएंगे। ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का सबसे बड़ा लहर है, ये एकदम बड़ा है। तो ये जो लहर है ये साधना भक्ति के बारे में एक्सप्लेन करता है लहर, दूसरा लहर साधना भक्ति क्या है, और साधना भक्ति का अलग अलग प्रकार का जो डिटेल्स है, कौन कर सकते हैं साधना भक्ति, साधना भक्ति का अलग अलग प्रकार क्या क्या है, साधना भक्ति करने से क्या मिलेगा, साधना भक्ति करने में बाधाएं किधर से आ सकता है, वो बाधाएं को हम कैसे पार करें, ये सब साधना भक्ति के बारे में आपको जो भी सीखना है, जो भी जानना है, सब कुछ ये दूसरा लहर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण लहर है हमको समझने के लिए, क्योंकि हम साधना भक्ति ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास और 15 मिनट है, और 15 मिनट में जितना खत्म कर सकते हैं हम करेंगे। उसके बाद हम शाम को कितने बजे, 4 से 6, साढ़े तीन बजे स्टार्ट करेंगे, अगर थोड़ा लेट हो गया तो 4 बजे से 6 बजे, नहीं तो 3:30 से 5:30 बजे तक करेंगे। अभी और 15 मिनट हम जो देख पाएंगे वो खत्म करेंगे हम। तो पहला है साधना भक्ति का व्याख्या क्या है, उत्तम भक्ति देख लिया हम, तो साधना भक्ति का व्याख्या क्या है, अभी उत्तम भक्ति देख लिया, उत्तम भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ये जो उत्तम भक्ति है इसको तीन स्तर पे हम कर सकते हैं, एक है साधना भक्ति का स्तर, एक है भाव भक्ति का स्तर, एक है प्रेम भक्ति का स्तर, पर तीनों स्तर पे ये उत्तम भक्ति ही है। ऐसा नहीं है कि साधना भक्ति का स्तर पे वो मिश्र भक्ति है और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का स्तर पे वो उत्तम बन जाता है, वैसा नहीं है। ये जो उत्तम भक्ति है वो साधना का स्तर पे भी वो उत्तम ही है, भाव का स्तर पे भी वो उत्तम ही है, और प्रेम का स्तर पे भी वो उत्तम ही है। क्यों? क्योंकि अन्य अभिलाषा नहीं है। फिर ये तीन अलग अलग, अगर अन्य अभिलाषा साधना के स्तर पे भी नहीं है, साध्य के और भाव और प्रेम का स्तर पे भी नहीं है, तो तीन अलग अलग श्रेणी क्यों, खाली एक उत्तम भक्ति बताएंगे तो काफी है, तो तीन श्रेणी क्यों? तीन श्रेणी इसलिए क्योंकि साधना भक्ति का स्तर पे अन्य अभिलाषा तो नहीं है पर अनर्था तो है, पर भाव भक्ति का स्तर पे लेश मात्र में अनर्था है, और भगवान के साथ वो जो भगवान का संपर्क का अनुभूति नहीं है साधना भक्ति का स्तर पे, पर भाव भक्ति का स्तर पे है, और प्रेम भक्ति का स्तर पे पूर्ण रूप से है, और अनर्थ बिल्कुल नहीं। तो अभी हम जो है साधना भक्ति का स्तर पे है, हमको अन्य अभिलाषा तो नहीं पर अनर्थ तो है, पर जो रूप गोस्वामी प्रभुपाद इत्यादि उनको अनर्थ है नहीं है, वो भी अन्य अभिलाषा से रहित है पर अनर्थों से भी रहित है कि नहीं। और दूसरा है हम साधना भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, पर भगवान के साथ अभी हमारा आदान प्रदान शुरू हो गया क्या, भगवान के साथ बात करते हैं, भगवान हमारे साथ आके खेलते हैं, वो स्तर पे पहुंचे नहीं, पर उसका अपेक्षा तो है, कभी तो एक दिन वो होगा, पर अभी तो हुआ नहीं। पर भाव का स्तर पे वो भगवान के साथ आदान प्रदान शुरू हो जाता है, और प्रेम का स्तर पे पूर्ण रूप से वो संबंध गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए साधना भक्ति का स्तर पे भी उत्तम भक्ति ही है, भाव भक्ति का स्तर पे भी उत्तम भक्ति ही है, प्रेम भक्ति का स्तर पे भी उत्तम भक्ति है, पर तीन अलग श्रेणी इसलिए है क्योंकि अनर्थ का निवृत्ति पूर्ण रूप से है भाव का स्तर पे, और आत्यंतिकी एकदम पूर्ण रूप से है प्रेम भक्ति का स्तर पे, और साधना भक्ति का स्तर पे भगवान के साथ वो संबंध का अनुभूति नहीं है, वो आनंद का अनुभूति नहीं है, पर भाव और प्रेम भक्ति का स्तर पे वो अनुभूति है। इसलिए तीन अलग श्रेणी है, एक भक्ति ने तीनों उत्तम भक्ति है, पर उत्तम भक्ति में तीन अलग श्रेणी, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है, तो अभी साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है, तो अभी आगे में जो भी हम डेफिनेशन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, अभी साधना भक्ति का व्याख्या देखेंगे, इसके बाद वैदी साधना भक्ति का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद रागानुग साधना भक्ति का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद भाव भक्ति का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद प्रेम भक्ति का व्याख्या देखेंगे। ये सब भक्ति का व्याख्या में भक्ति शब्द का मतलब है उत्तम भक्ति, ये हमको याद में रखना चाहिए। ये कोई भी स्तर पे वो जो भक्ति है अन्य अभिलाषिता से वर्जित है और ज्ञान कर्मादि अनावृतम है, ज्ञान कर्म योग इत्यादि मार्गों से अनावृत है। तो ये है, ये हमको याद रखना चाहिए। तो अभी हम साधना भक्ति का व्याख्या देखने वाले हैं, पर ये समझना चाहिए हम साधना उत्तम भक्ति का व्याख्या देख रहे हैं। साधना का स्तर में भी जो उत्तम है वो देख रहे हैं, हम मिश्र भक्ति के बारे में नहीं देख रहे हैं। तो ये साधना भक्ति क्या है, रूप गोस्वामी बोलते हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावासा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। बोलते हैं कि कृति का मतलब है इंद्रियों, साध्य का मतलब है क्रिया। जब इंद्रियों के द्वारा कुछ क्रिया करते हैं, पर किस लिए, कौन से हेतु से, साध्य भावासा, साध्य भावा भवेत, ताकि ये जो क्रियाओं से मुझे भाव भक्ति का प्राप्त हो। तो भाव भक्ति का प्राप्त करने का हेतु इंद्रियों को जब भगवान का सेवा में लगाते हैं उसको साधना भक्ति बोलते हैं। तो साधना भक्ति का जो हेतु है भाव भक्ति को प्राप्त करना, क्यों, क्योंकि भाव भक्ति का स्तर पे भगवान के साथ संपर्क जुड़ जाता है। तो वो संपर्क का अभिलाषा रख के जब वो हम साधना भक्ति करते हैं, जब इंद्रियों को भक्ति का कार्य में लगाते हैं, तो उसको साधना भक्ति बोलते हैं। और ये जो साधना भक्ति के द्वारा जो हम भाव का प्राप्ति करते हैं, वो जो भाव साधना से क्रिएट नहीं होता है, निर्मित नहीं होता है, साधना से निर्मित नहीं होता है भाव, भाव अपने आप हमारा हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोई श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भाव है, ये हमारा हृदय में सनातन काल से स्थित है, तो साधना भक्ति उसको निर्माण नहीं कर रहा है। और कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो आध्यात्मिक वस्तु नहीं हो सकता है, वो भौतिक वस्तु हो जाता है। ये भाव और प्रेम है ये आध्यात्मिक वस्तु नहीं है, वो भौतिक वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक वस्तु है। तो मतलब उसका निर्माण नहीं होता है, वो सनातन काल से रहता है। किधर रहता है, भगवान भक्तों का हृदय में रहता है, मतलब जीवात्मा का हृदय में रहता है। पर गुरु और कृष्ण का संपर्क में आके जब एक जीवात्मा वो शुद्ध भक्ति का श्रद्धा को प्राप्त करता है, साधना भक्ति का विधि, साधना भक्ति में उसको श्रद्धा मिलता है, तब वो साधना भक्ति करके वो जो भाव है उसको दोबारा जागृत कर देता है, भाव भक्ति को जागृत कर देता है। जैसे समझिए कि आपका घर पे एक रूम है जिसमें बहुत सारा ट्रेजर, ट्रेजर को क्या बोलेंगे, खजाना है, खजाना का रूम है, पर इतना बड़ा ताला लगा के रखा है कि आप उसको खोल ही नहीं पाएंगे। पर खजाना तो आपके पास है पर उसका चाबी नहीं है। तो जब हम बोलते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज बोलते हैं ना, गुरु और कृष्ण का कृपा से हमको एक भक्ति लता बीज मिलता है, तो क्या मिलता है हमको? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रेम तो अंदर है ही, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से क्या मिलता है हमको? उसका चाबी मिलता है। वो चाबी क्या है? वो ही क्या है, वो भक्ति लता बीज क्या है? वो चाबी बोलेंगे अभी, साधना, साधना भक्ति मिलता है। वो भाव को प्राप्त करने का जो साधन है वो मिलता है, पर वो भाव तो ऑटोमेटिकली है। जैसा वो खजाना है अंदर, पर वो खजाना को खोलने का चाबी मिलता है। वो खजाना कौन सा चाबी से खुलता है? साधना भक्ति से मिलता है। तो वो साधना जो वो भाव को जागरण करने का हेतु हम इंद्रियों को कृष्ण का सेवा में लगा के करते हैं, वो क्रिया को साधना भक्ति बोलते हैं। वही है साधना भक्ति का व्याख्या। तो ये साधना भक्ति का व्याख्या से हम अभी विराम करेंगे, फिर हम 3:30 बजे दोबारा इसको आगे बढ़ाएंगे, और जितना हो सकता है उतना तक एटलीस्ट ये दूसरा लहर को तो भी आज हम कंप्लीट कर पाएंगे तो अच्छा है। भाव और प्रेमा उधर तक पहुंचने के लिए भी काफी टाइम है, तो जानना थोड़ा बाद में जानेंगे तो भी चलेगा, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर एटलीस्ट साधना भक्ति के बारे में थोड़ा जितना हो सकता है उतना, 3:30 बजे हम वापस आएंगे और 5:30 बजे तक 2-2.5 घंटा हम और चर्चा करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे हम। हुआ है चैप्टर, अभी हम क्रॉस 19 चैप्टर्स एंड गो टू आगे, नहीं नहीं 19 के अंदर जो मतलब हम मतलब देखेंगे, अगर जितना समझ पा रहे हैं, कितना फास्ट जा सकते हैं उतना फास्ट जाएंगे, नहीं तो जितना हो सकता है उतना करेंगे। अगर ये सब आप ऑलरेडी सुन चुके हैं तो आपके लिए एक रिविजन हो जाएगा बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, शिल रूप गोस्वामी पाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण।